आगे सबक देखिए भाई। बाबुल इस्तीलाद इदा वलदतिल अमतु मिम मौलाहा फकद सारत उम्म वलदिन लहू ला यजूजु बैउहा वला तमलीकुहा लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु आतकहा वलदुहा أخبر عن إعتاقها فيثبت بعض مواجبه وهو حرمة البيع। भाई गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि अगर आका यूं कहे कि कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु फहुव हुर्रुम बाद गदिन, तो इस सूरत में ये अमलिकु फेले मुजारे है और फेले मुजारे जो है वो हाल के लिए हकीकत है, लिहाजा जब ये बगैर करीने के मुतलकन इस्तेमाल हो तो फिर ये हाल के लिए होगा भाई। तो लिहाजा इस सूरत में जब आका ने कहा कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु कि मेरा जो भी ममलूक है यानी फिलहाल मेरा जो ममलूक है फहुव हुर्रुम बादा गदिन वो कल के बाद यानी परसों आजाद है, तो फिलहाल जो ममलूक हैं वो परसों आजाद हो जाएंगे, लेकिन इस तालीक के बाद परसों से पहले अगर आका ने कोई और गुलाम खरीदा तो वो इस कसम के तहत दाखिल नहीं, वो गुलाम आजाद नहीं होंगे। इसी तरह है हुक्म अगर अमलिकुहु के बजाय आका ली कह देता है यानी जार मजरूर कि कुल्लु ममलूकिन ली कि मेरा जो भी ममलूक है, और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि कुल्लु ममलूकिन ली ये भी हाल के लिए है भाई, और अगर आका ने कहा कुल्लु ममलूकिन अमलिकुहु फहुवा हुर्रुम बादा मौती कि वो मेरी मौत के बाद आजाद है, तो फिर इस सूरत में याद रखो ये बाज एतबार से देखें तो ईजाब इत्क है और बाज एतबार से देखें तो ये वसीयत है क्योंकि मौत के बाद की तरफ निस्बत की गई है, तो लिहाजा यहां पर दोनों मुशाबहतों पर अमल किया जाएगा। तो लिहाजा फिलहाल जो ममलूक होंगे वो मुदब्बर बन जाएंगे, बाद में जो खरीदेगा वो मुदब्बर तो नहीं बनेंगे लेकिन वो मौत के वक्त वो भी सुलुस में से आजाद हो जाएंगे। तो यहां पर ईजाब इत्क का भी एतबार किया गया यानी फिलहाल इस बात इत्क है तो फिलहाल जो ममलूक हैं वो इसमें शामिल हुए और मुदब्बर बन गए, और नीज इसके अंदर आने वाली हालत का भी एतबार किया गया क्योंकि ये वसीयत भी है और वसीयत तो मौत के बाद नाफिज होती है, तो मौत के वक्त जितने भी ममलूक होंगे चाहे यमीन के बाद ही क्यों ना खरीदे हों वो सब भी वसीयत में शामिल हैं तो वो सुलुस में से आजाद हो जाएंगे भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर कोई अपने गुलाम को माल के इवज पर आजाद करता है तो गुलाम के कबूल करते ही वो आजाद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये अक़्दे मुआवजा हो रहा है, गुलाम को आजादी मिल रही है तो दूसरी तरफ गुलाम को माल देना पड़ रहा है, तो लिहाजा ये अक़्दे मुआवजा है और अक़्दे मुआवजा में कबूल करते ही उसका हुक्म साबित हो जाता है, जैसे बैअ है बैअ के अंदर ईजाब कबूल होते ही बैअ साबित हो जाती है और मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि यहां पर ये जो एताक आला माल है ये निकाह के और तलाक के और सुला अन दमिल आमद के मुशाबे है, लिहाजा यहां पर अगर माल के अंदर मामूली जहालत भी आ जाए तो फिर भी ये अकद सही है, जबकि इसके मुकाबले में बै जो है उसकी बुनियाद तंगी पर है, बै के मामले में लोग तंगी करते हैं, बाय की कोशिश होती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा कीमत मिल जाए चीज की और मुश्तरी की कोशिश होती है कि उसे कम कीमत के अंदर चीज मिल जाए, तो बै की बुनियाद तंगी पर है, लिहाजा बै के अंदर थोड़ी सी भी जहालत आएगी तो बै ही फासिद हो जाएगी क्योंकि ये झगड़े तक पहुंचा देगी, और जबकि इसके मुकाबले में निकाह तलाक और ये एता कला माल जो है इनकी बुनियाद नरमी पर है, इनमें नरमी की जाती है क्योंकि यहां पर एक तरफ तो माल है लेकिन दूसरी तरफ माल नहीं है भाई, तो लिहाजा यहां पर अगर माल के अंदर थोड़ी बहुत जहालत भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, ये अक़द फिर भी सही है भाई। और अगर आका ने गुलाम की आजादी को माल की अदायगी के साथ मुअल्लक किया कि अगर तुमने मुझे 1000 दिरहम अदा कर दिए तो फिर तुम आजाद हो, तो इस सूरत में गुलाम जब माल अदा करेगा तब आजाद होगा, क्योंकि गुलाम की आजादी की शर्त क्या जिक्र की है आका ने कि अगर गुलाम उसको माल अदा कर दे, तो लिहाजा माल की अदायगी जरूरी है। और नीज अगर गुलाम माल हाजिर कर दे तो आका को मजबूर किया जाएगा माल के लेने पर। मजबूर करने का माना यह है कि माल के दरमियान और आका के दरमियान तखलिया कर दिया जाएगा कि वो चीज आका के सामने लाकर रख दी गई कि वो उसको लेना चाहे तो ले सके, यानी हर किस्म के मान्या को दूर कर दिया जाए। तो इस सूरत में जब आका के सामने माल को लाकर रख दिया गया तो आका को काबिज ही शुमार किया जाएगा कि गोया इसने माल पर कब्जा कर लिया है, तो अदायगी हो गई। जब अदायगी हो गई तो गुलाम भी आजाद हो जाएगा। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह तो तालीक है, आका ने क्या कहा है, अगर तूने मुझे 1000 दिरहम अदा कर दिए तो तू आजाद है, तो यह तालीक है, और तालीक जो है उसको फसख भी नहीं किया जा सकता, और नीज तालीक जो है वो गुलाम के कबूल पर भी उसका दारोमदार नहीं होता, और यहां भी ऐसा ही है, न गुलाम के कबूल की जरूरत है और न इसको अब आका फसख कर सकता है, तो ये तालीक है। और तालीक का जाब्ता यह है कि तालीक के अंदर किसी को शर्त के वजूद पर मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह शर्त को वजूद दे, तो यहां पर भी ये अदायगी जो है ये तो शर्त है, लिहाजा आका को माल के लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। जबकि साहिबैन और इमाम साहिब इस मसले में फरमाते हैं कि ये जो आका ने जिक्र किया कि अगर तूने मुझे 1000 दिरहम अदा किए तो तू आजाद है, ये लफ्जों के एतबार से देखें तो ये तालीक है, और ये मकसद के एतबार से देखें तो ये मुआवजा है। मालूम है आका गुलाम को वैसे ही नहीं आजाद करना चाहता बल्कि इवज लेना चाहता है, तो लिहाजा हमने दोनों की रियायत की। तो इब्तिदा के एतबार से जब यह तालीक है तो आका के लिए गुलाम का बेचना जायज है, गुलाम मुकातब नहीं बना, लेकिन जब गुलाम अदायगी कर रहा है तो यह बदले किताबत के दर्जे में है, और बदले किताबत के लेने पर तो आका को मजबूर किया जाता है, लिहाजा यहां पर भी ये गुलाम जो माल अदा कर रहा है उसके लेने पर आका को मजबूर किया जाएगा। और साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि इसी पर फिका का मदार है, इसी पर फिका का मदार है, यानी इसी पर फिकी मसाइल का मदार है, इसी पर फिकी मसाइल की तखरीज की जाएगी, यानी वो चीजें कि इब्तिदा के एतबार से वो और चीज है और इंतहा के एतबार से और चीज है, तो वहां दोनों की रियायत रखी जाएगी, इब्तिदा का भी लिहाज रखा जाएगा और इंतहा का भी, यानी दोनों मुशाबहतों पर अमल किया जाएगा। तो यहां पर भी इब्तिदा के एतबार से यह तालीक है तो उस पर भी अमल किया जाएगा, और इंतहा के एतबार से यह मुआवजा है यानी बदले किताबत के दर्जे में है तो उस पर भी अमल किया जाएगा। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि यहां पर अगर आका ने इन जिक्र किया है, इन अद्दैत इलैया अल्फ दिरहमिन फअंत हुर्रुन, तो अगर आका ने इन जिक्र किया है तो आका इख्तियार दे रहा है, और इख्तियार जो है वो मजलिस तक रहता है, लिहाजा इसी मजलिस में गुलाम का माल अदा करना जरूरी है, अगर इस मजलिस में वो माल अदा नहीं करेगा तो ये गुलाम का इख्तियार खत्म हो जाएगा, वो बाद में अदायगी करने से भी आजाद नहीं होगा। लेकिन अगर आका ने ईजा का लफ्ज इस्तेमाल किया तो ईजा का लफ्ज तो वक्त के लिए इस्तेमाल होता है मता के दर्जे में, तो जब भी गुलाम अदा करेगा वो आजाद हो जाएगा भाई। और अगर आका ने गुलाम से कहा कि तू मेरी मौत के बाद 1000 दिरहम की शर्त पर आजाद है, तो यहां पर आजादी मौत के बाद आएगी, लिहाजा कबूल भी मौत के बाद ही किया जा सकता है, उससे पहले कबूल या रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता फुकहा फरमाते हैं कि मौत के बाद भी वो कबूल करेगा तो आजाद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मौतिक मर चुका है और ये गुलाम अब वारिसों की तरह मुंतकिल हो चुका है, तो लिहाजा वारिसों का उसे अब आजाद करना जरूरी है, वैसे आजाद नहीं होगा भाई। और फिर साहिब हिदाया ने बतलाया कि अगर किसी ने अपने गुलाम को आजाद किया 4 साल की खिदमत की शर्त पर और गुलाम ने कबूल कर लिया तो कबूल करते ही गुलाम आजाद हो जाएगा और फिर उसके बाद उसी वक्त गुलाम का इंतकाल हो गया। तो फिर इस सूरत में इमाम मोहम्मद और शेखैन रहिमहुमुल्लाह का इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये अक़्दे मुआवजा है, एक तरफ से खिदमत है तो दूसरी तरफ गैर माल है यानी आजादी है और आजादी तो गैर माल है। तो ये अक़्दे मुआवजा हुआ और अक़्दे मुआवजा का हुक्म कबूल करते ही साबित हो जाता है, लिहाजा गुलाम तो आजाद हो गया। लेकिन अगर आका और गुलाम में से कोई एक मर गया यानी खिदमत से पहले ही, तो अब खिदमत मुतअज़्ज़िर हो गई तो अब खिदमत की कीमत दी जाएगी, इसलिए क्योंकि खिदमत बदल है आजादी का, आजादी मुबदल है और मुबदल की तो कोई कीमत ही नहीं है, तो बदल जब देना मुतअज़्ज़िर हुआ तो बदल ही की कीमत देना पड़ेगी क्योंकि मुबदल की कोई कीमत नहीं है। जबकि शेखैन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि यहां पर खिदमत जो है ये आजादी का बदल नहीं है बल्कि गुलाम की जात का बदल है और गुलाम की जात भी माल है, तो यहां दोनों तरफ से माल है, खिदमत भी माल और गुलाम की जात भी माल है, तो ये अक़्द मुआवजा है माल के बदले माल। तो यहां पर जब बदल यानी खिदमत मुतअज़्ज़िर हो गई तो फिर मुबदल वापस किया जाएगा, लेकिन यहां मुबदल तो यानी गुलाम की जात को तो सुपुर्द नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो आजाद हो चुका है कबूल करते ही भाई, और लिहाजा अब उसको वापस दोबारा गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो जब मुबदल को सुपुर्द करना मुतअज़्ज़िर हो गया तो फिर अब उसकी कीमत देना पड़ेगी और गुलाम माल है और उसकी कीमत है तो वो कीमत अब दी जाएगी। बात समझ में आ गई। और साहिब हिदाय ने यह भी बयान किया कि इस इख्तिलाफी मसले की बुनियाद एक और इख्तिलाफी मसले पर है, और वो इख्तिलाफी मसला यह है कि अगर आका ने गुलाम की जात को उसी गुलाम के हाथ फरोख्त कर दिया एक मुअय्यन बांदी के बदले में कि ये बांदी मुझे लाकर दोगे, तो कबूल करते ही गुलाम आजाद हो गया और अब उस गुलाम ने बांदी आका के हवाले करनी है, गुलाम वो बांदी ले आया लेकिन फिर उस बांदी का कोई और मुस्तहिक निकल आया, या वो बांदी अदायगी से पहले ही गुलाम के पास हलाक हो गई, तो यहां पर अब ये बदल देना मुतअज़्ज़िर हो गया क्योंकि बांदी हलाक हो चुकी है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये बांदी बदल है और आजादी मुबदल है, तो बांदी तो माल है लेकिन आजादी तो माल नहीं है, लिहाजा जब बदल देना मुमकिन न रहा तो मुबदल की तो कीमत ही नहीं है, उसकी कीमत तो नहीं आ सकती क्योंकि वो आजादी है, तो इसी बदल ही की कीमत अब देना पड़ेगी। जबकि शेखैन रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि कबूल करते ही गुलाम आजाद हो गया है तो ये जो बांदी बदले के तौर पर देगा ये गुलाम की जात का इवज है, तो बांदी है बदल और गुलाम की जात है मुबदल, और बदल देना मुतअज़्ज़िर हो गया क्योंकि बांदी का इस्तेहकाक निकल आया या बांदी हलाक हो गई, तो लिहाजा जब बदल के देना मुमकिन ना रहा तो मुबदल को वापस किया जाएगा, और मुबदल का वापस करना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि गुलाम आजाद हो चुका है और दोबारा अब उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, तो जब मुबदल की वापसी मुमकिन न रही तो फिर मुबदल की कीमत देना पड़ेगी। तो ये बांदी वाला मसला भी उस खिदमत वाले मसले की तरह है, जैसे यहां पर बांदी का देना मुतअज़्ज़िर हुआ है वहां पर खिदमत का देना मुतअज़्ज़िर हो गया था क्योंकि आका या गुलाम का इंतकाल हो गया था। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर एक शख्स ने दूसरे से कहा कि अपनी बांदी 1000 दिरहम के इवज पर आजाद कर दो इस शर्त पर कि तुम मेरे साथ उसका निकाह करवाओगे, तो चुनांचे आका ने उस बांदी को आजाद कर दिया और फिर बांदी से कहा कि इस आदमी से निकाह करो, तो वो बांदी चूंकि आजाद हो चुकी है तो उसने इनकार कर दिया कि मैं इस शख्स से निकाह नहीं करूंगी। तो इस सूरत में फुकहा फरमाते हैं कि आमिर पर इस बांदी की कीमत वाजिब नहीं, आमिर पर इस बांदी की कीमत वाजिब नहीं। वजह यह कि एक है बदले एताक और एक है बदले तलाक। बदले एताक जो है वो अजनबी पर वाजिब नहीं किया जा सकता, जबकि बदले तलाक जो है वो अजनबी पर वाजिब किया जा सकता है। वजह यह कि बदले तलाक के अंदर अजनबी भी उसी तलाक वाली औरत की तरह हो गया, जैसे तलाक की वजह से औरत को कोई नया इख्तियार नहीं मिला, कोई नई चीज नहीं मिली, सिर्फ उस पर से पाबंदियां खत्म हुई हैं। इसी तरह यह अजनबी भी इसी औरत की तरह है कि इस तलाक की वजह से उस अजनबी को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो अजनबी इस औरत की तरह हुआ, और इस औरत पर तो बदले तलाक को वाजिब किया जा सकता है, तो वो अजनबी जब इस औरत की तरह है तो उस पर भी बदले तलाक को वाजिब किया जा सकता है। जबकि बदले एताक में ऐसा नहीं है, बदले एताक के अंदर गुलाम को आजादी की वजह से वो तसरुफात हासिल हो जाते हैं जो उससे पहले उसको हासिल नहीं थे, जबकि इसके मुकाबले में अजनबी को तो इस एताक से कुछ हासिल ना हुआ, तो अजनबी गुलाम जैसा नहीं, क्योंकि गुलाम को फायदा हासिल हुआ है और अजनबी को कोई फायदा हासिल नहीं। तो जब ये अजनबी गुलाम जैसा नहीं तो फिर इसका हुक्म भी गुलाम वाला नहीं होगा, यानी गुलाम पर तो बदले एताक को वाजिब किया जा सकता है लेकिन अजनबी पर बदले एताक को वाजिब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो गुलाम की तरह नहीं है भाई। तो लिहाजा यहां पर उस अजनबी पर बदले एताक वाजिब नहीं होगा, उसके जिम्मे कीमत नहीं होगी, और यह बांदी जो है मामूर की तरफ से ही आजाद हो जाएगी। लेकिन इसके बजाय अगर आमिर ने अन्नी का लफ्ज बढ़ा दिया कि इस बांदी को मेरी तरफ से आजाद कर दो, तो इस सूरत में आपने उसूल फिका के अंदर पढ़ा है कि यहां इक्तिजाअन बैअ और तौकील को माना जाएगा। गोया आमिर यह कह रहा है कि बांदी मुझे बेच दो और फिर बेचने के बाद मेरी तरफ से वकील बन जाओ और इसको मेरी तरफ से आजाद कर दो। तो यहां इक्तिजाअन बैअ साबित हो गई, जब इक्तिजाअन बैअ साबित हो गई तो अब आमिर को कीमत अदा करना पड़ेगी। और नीज उसने निकाह को भी जिक्र किया था, तो मालूम हुआ कि आमिर ने जो 1000 दिरहम इवज जिक्र किया था वो दो चीजों का इवज था, एक बांदी की कीमत भी और एक बांदी का महर भी। तो लिहाजा यहां पर बांदी की कीमत और उसके महरे मिसल दोनों को देखा जाएगा। मसलन बांदी की कीमत है 1000 दिरहम और इस जैसी बांदी का महरे मिसल होता है 500 दिरहम, तो मालूम हुआ जो कीमत है वो महर के मुकाबले में दुगनी है भाई। अगर महर 1 गुना है तो कीमत उसके मुकाबले में 2 गुना है, तो गोया कुल 3 हिस्से हो गए। तो इस 1000 के कुल 3 हिस्से कर दिए जाएंगे और 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा महर के मुकाबले में है और 2 हिस्से कीमत के मुकाबले में हैं। और तो यहां पर अब बांदी ने निकाह तो नहीं किया, लिहाजा 1000 में से 1/3 यानी महर वाला हिस्सा तो साकित हो जाएगा, वो अदा नहीं करना क्योंकि बांदी ने निकाह ही नहीं किया। अलबत्ता 2/3 जो है वो कीमत है, वो अदा करने पड़ेंगे। और फिर साहिब हिदाया ने ये मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर इन दोनों सूरतों के अंदर बांदी निकाह कर लेती है उस आदमी से, तो फिर कहते हैं उसी तरह किया जाएगा, ये जो 1000 दिरहम है उसको उस बांदी की कीमत और उसके महर पर तकसीम किया जाएगा। तो महर के मुकाबले में 1/3 आ रहा है और कीमत के मुकाबले में 2/3। और यहां 2 सूरतें बनती हैं, एक सूरत में उसने अन्नी नहीं कहा, जब अन्नी नहीं कहा तो उस अजनबी पर बदले एताक वाजिब नहीं होगा, तो लिहाजा सिर्फ बांदी का उसका महर मिल जाएगा और बाकी 2/3 जो है वो साकित हो जाएंगे। और अगर अजनबी ने अन्नी का लफ्ज कहा था कि मेरी तरफ से आजाद कर दो, तो फिर इस सूरत में उस पर बांदी की कीमत भी वाजिब और बांदी ने निकाह कर लिया है तो बांदी का महर भी वाजिब है, तो महर जो है वो बांदी को देगा और कीमत जो है यानी 1000 में से 2/3 वो बांदी के आका को देगा भाई। बात समझ में आ गई। और उसके बाद फिर हमने बाबु तदबीर शुरू किया था, आपको साहिब हिदाया ने बतलाया कि बाज अल्फाज जो हैं वो तदबीर के अंदर सरीह हैं, लिहाजा आका जब वो अल्फाज कहेगा तो उनका और कोई माना नहीं सिवाय तदबीर के, लिहाजा वो अल्फाज कहते ही गुलाम मुदब्बर बन जाएगा। मसलन आका कहता है जब मैं मर जाऊं तो तू आजाद है, या आका कहता है कि तू मेरे पीछे यानी मेरे मरने के बाद तू आजाद है, या आका कहता है कि अंत मुदब्बर हूं तू मुदब्बर है, या आका कहता है मैंने तुझे मुदब्बर बना दिया कद दब्बर तू का, तो इन तमाम अल्फाज के अंदर वो मुदब्बर बन जाएगा भाई। और फिर मुदब्बर को बेचना भी जायज नहीं, उसकी हिबा भी जायज नहीं, और उसको मिल्कियत से निकालकर किसी दूसरे को मालिक बनाना भी जायज नहीं। हां सिर्फ इसको आजाद किया जा सकता है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुदब्बर की बैअ और हिबा जायज है, इसलिए क्योंकि तदबीर भी तालीक है, और जैसे और जगह पर तालीक करने से उस चीज को बेचना या हिबा करना मुमतना नहीं होता, तो यहां तदबीर के अंदर भी इस गुलाम या बांदी को बेचना या हिबा करना मुमतना नहीं होगा। और नीज ये मुदब्बर भी किसकी तरह है, मुदब्बर मुकय्यद की तरह है, और मुदब्बर मुकय्यद तो ए अहनाफ आप भी मानते हैं कि उसको बेचना भी जायज है और हिबा करना भी जायज है। मैंने आपको बतलाया था कि मुदब्बर मुकय्यद वो है जिसे आका कहता है कि मसलन अगर मैं इसी मरज में मर गया या मैं इस सफर में मर गया तो तुम आजाद हो। तो अब इस सूरत में यह मुदब्बर मुकय्यद है, यानी इसका आजाद होना यकीनी नहीं, क्योंकि यकीनी नहीं कि आका उस सफर में या उस मरज में मर जाए, तो लिहाजा यह मुदब्बर मुकय्यद है, इसको बेचा भी जा सकता है और इसको हिबा भी किया जा सकता है। जबकि आका जब अपनी मौत के साथ गुलाम की आजादी को मुअल्लक करता है तो आका की मौत तो यकीनी है, तो उस गुलाम की आजादी अब यकीनी हो गई, गुलाम तो वो गुलाम आजादी का मुस्तहिक हो गया, लिहाजा उसको बेचना और हिबा करना जायज नहीं। तो दलील चल रही थी इमाम शाफई रहिमहुल्लाह की। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तदबीर भी तालीक है, और तालीक से किसी चीज की बै और हिबा मुमतने नहीं होती, तो तदबीर से भी गुलाम की बै और हिबा मुमतने नहीं होगी। और नीज वो फरमाते हैं कि यह तदबीर जो है यह वसीयत है, और किसी चीज की वसीयत कर दी जाए तो उसकी बै और हिबा मुमतने नहीं होती, लिहाजा इस गुलाम की बै और हिबा भी मुमतना नहीं होगी भाई। जबकि हम कहते हैं हमारी दलील हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुदब्बर ला युबाउ वला युहबु वला यूरसु वहुवा हुर्रुम मिनस्सुलुसी, कि मुदब्बर को ना बेचा जा सकता है ना हिबा किया जा सकता है, वला यूरसु और ना उसमें वरासत जारी होती है, और वो सुलुस में से आजाद होता है। और नीज अकली दलील ये है कि ये जो मुदब्बर है इसने आजाद होना है, और इसकी आजादी का सबब वो जो आका ने कहा था अंतहुर्रुन बादा मौती, तो ये अंतहुर्रुन इसकी आजादी का सबब है, और फिलहाल ये सबब है तो फिलहाल ही इसको सबब करार दे दिया जाए। मैंने आपको बतलाया था कि इंदल अहनाफ मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा वजूदी शर्त, जब शर्त पाई जाएगी तब मुअल्लक सबब बनेगा, उससे पहले वो है ही नहीं। जैसे खावंद ने बीवी से कहा इन दखलती दारा फ अंति तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो इस अंति तालिकुन से तलाक होनी है, लेकिन ये इस वक्त सबब नहीं है, जब बीवी उस घर में जाएगी उस वक्त अंति तालिकुन का कौल पाया जाएगा और बीवी को तलाक हो जाएगी। तो इंदल अहनाफ मुअल्लक जो है वो वजूद शर्त के वक्त सबब बनता है, फिलहाल सबब नहीं बनता, जबकि इंदा शवाफ़ी जो मुअल्लक होता है वो सबब बनता है इंदा तकल्लुम, यानी जब उस पर तकल्लुम किया जाए उसी वक्त सबब बनता है, अलबत्ता वहां एक मानेअ होता है यानी शर्त होती है वो इसको वाकई नहीं होने दे रही। तो लिहाजा यहां मैंने बतलाया मुदब्बर के मसले के अंदर हमारा भी वही कौल है जो इमाम शाफई रहमतुल्लाह का कौल है, इसलिए क्योंकि आका ने जिंदगी में गुलाम से क्या कहा अंतहुर्रुन बादा मौती, तो फिलहाल ये अंतहुर्रुन मौजूद है और मौत के बाद तो ये मौजूद नहीं होगा, लिहाजा फिलहाल ही इसको सबब बनाओ, बाद में सबब न बनाओ। और नीत इसलिए क्योंकि मौत के बाद तो आका में अहलियत ही ना रहेगी आजाद करने की, क्योंकि आका मर चुका है भाई, तो लिहाजा मौत के बाद तो ये अंतहुर्रुन आजादी का सबब बन ही नहीं सकता, लिहाजा इसको फिलहाल ही सबब बनाओ। जबकि बाकी तालीकात जो हैं उनमें सबबियत को मुअख्खर करना मुमकिन है, क्योंकि तालीक के वक्त भी तालीक करने वाले में अहलियत होती है, और जब शर्त पाई जाती है उस वक्त भी तालीक करने वाले में अहलियत होती है, तो इसलिए वहां तो मुअख्खर करना मुमकिन है। सबबियत को आम तालीकात में शर्त तक मुअख्खर करना मुमकिन है, लेकिन तदबीर के अंदर सबबियत को शर्त के पाए जाने तक मुअख्खर करना मुमकिन नहीं है भाई। और नीज आम तालीक में और तदबीर में फर्क है, क्योंकि तदबीर जो है ये वसीयत है, और वसीयत जो है वो फिलहाल किसी को अपने माल के अंदर अपना नाइब बनाना है, जैसे वारिस जो है फिलहाल ही किसी के माल के अंदर उसका नाइब होता है। जैसे कि वारिस जो है माल के अंदर फिलहाल नाइब होता है, हां अभी फिलहाल उसको माल मिलेगा नहीं क्योंकि असल मौजूद है, और जब तक असल हो तब तक नाइब उसकी जगह पर नहीं आता भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बयान किया कि आका ये जो मुदब्बर है इससे खिदमत भी ले सकता है, इससे मजदूरी भी करवा सकता है, इजारे पर भी दे सकता है, और अगर ये बांदी है तो इससे आका सोहबत भी कर सकता है, और आका इसका किसी और से निकाह भी करवा सकता है भाई। और अगर आका मर जाए तो ये मुदब्बर उसके सुलुसे माल में से आजाद होता है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि मुदब्बरा की जो औलाद है वो भी मुदब्बर ही होगी, इस पर तमाम सहाबा का इजमा है। और अगर तदबीर मुकय्यद हुई, आका ने गुलाम से कहा कि अगर मैं इस मरज में मर गया या इस सफर में मर गया, तो अगर आका के अंदर वो सिफत पाई गई उसी सफर में वो मर गया या उसी बीमारी से वो मर गया, तो फिर इस सूरत में ये मुदब्बर मुकय्यद भी इसी तरह आजाद हो जाएगा जैसे मुदब्बर मुतलक होता है भाई। क्या माना? कि ये भी उसी मुदब्बर मुतलक की तरह आजाद हो जाएगा। माना ये है कि जिस तरह मुदब्बर मुतलक सुलू से माल से आजाद होता है, ये मुदब्बर मुकय्यद भी सुलू से माल से ही आजाद होगा भाई। अब आइए आज के सबक पर। बाबुल इस्तीलाद इदा वलदतिल अमतु मिन मौलाहा फकद सारत उम्म वलदिन लहू ला यजूजु बैउहा वला तमलीकुहा लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु अअताकहा वलदुहा। भाई अब इस्तीलाद का बाब आया। इस्तीलाद बाब इस्तेफाल है, और आपने पढ़ा है कि बाब इस्तेफाल के अंदर ये जो सीन है ये तलब के लिए आता है। तो इस्तीलाद का माना है औलाद को तलब करना। इसका मादा जो है इसका मादा वो लाम दाल है। तो इस्तीलाद असल में था इस्तिवलाद, ये या की जगह वो था, इस्तिवलाद यानी औलाद को तलब करना। और औलाद का तलब करना जिस तरह बांदी से होता है इसी तरह बीवी से भी होता है। बीवी से निकाह किस लिए किया जाता है? औलाद को तलब करने के लिए। तो बीवी के अंदर भी इस्तीलाद है, औलाद को तलब करना है, और बांदी से भी कभी कभार औलाद को तलब किया जाता है। तो बीवी में भी इस्तीलाद है, बांदी में भी इस्तीलाद है, लेकिन यह इस्तीलाद का लफ्ज बांदी के साथ खास है, यह बांदी के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगरचे औलाद का तलब करना वो बीवी में भी है, लेकिन इस्तीलाद का लफ्ज किसके साथ खास है? बांदी के साथ भाई। तो बांदी से औलाद तलब करना यानी उसको उम्मे वलद बनाना। तो कहते हैं बाबुल इस्तीलादी, ये बाब है इस्तीलाद का। इदा वलदतिल अमतु मिन मौलाहा फकद सारत उम्मा वलदिन लहू। आप पढ़ चुके हैं कि अगर बांदी से आका की औलाद हो तो ये बांदी इस आका की उम्मे वलद बन जाएगी। और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि आका का इकरार भी जरूरी है। आका खुद इकरार करे कि ये मेरी औलाद है। अगर आका इकरार नहीं करेगा तो इस सूरत में उस बच्चे का नसब आका से साबित नहीं होगा, और जब नसब साबित नहीं होगा तो ये बांदी उस आका की उम्मे वलद भी नहीं बनेगी। तो मालूम हुआ उम्मे वलद में आका का इकरार जरूरी है भाई। तो कहते हैं इदा वलदतिल अमतु मिन मौलाहा, जब बांदी जन्म दे दे औलाद को मिन मौलाहा अपने आका से, फकद सारत उम्मा वलदिन लहू, तो तहकीक ये बांदी अपने आका की उम्मे वलद हो गई। ला यजूज़ु बैउहा वला तमलीकुहा, न तो इस बांदी को बेचना जायज है और न इसकी तमलीक जायज है। मैंने आपको बतलाया था मल्ला का युमल्लिकु तमलीक का माना है किसी दूसरे को मालिक बनाना। तो इस बांदी को बेचा भी नहीं जा सकता और किसी दूसरे को इसका मालिक भी नहीं बनाया जा सकता, यानी हिबा या सदका वगैरह भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं ला यजूज़ु बैउहा वला तमलीकुहा, इस बांदी को बेचना भी जायज नहीं है और किसी दूसरे को इसका मालिक बनाना भी जायज नहीं है। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस फरमाने मुबारक की वजह से कि आपने फरमाया आताकहा वलदुहा, कि इसको इसके बच्चे ने आजाद कर दिया है। ये हुजूर अलैहि सलाम ने हजरत मारिया किबतिया रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में फरमाया। हज़रत मारिया क़िबतिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बांदी थीं और इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहिम को जन्म दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम के ये बेटे इब्राहिम ये तकरीबन 1.5 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा क्या आप इनको आजाद नहीं करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप मारिया क़िबतिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को आजाद नहीं करेंगे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया आतकहा वलदुहा, उनके बच्चे ने उनको आजाद कर दिया है, उनके बच्चे ने उनको आजाद कर दिया है। और अहनाफ कहते हैं कि इस हदीस का यह माना नहीं है कि वो आजाद हो चुकी हैं, माना यह है कि वो बच्चे की वजह से आजादी की मुस्तहिक हो चुकी हैं, उनका बच्चा उनकी आजादी का सबब बन गया है, अब इन्होंने हर हाल में आजाद होना है। तो इस पर इश्काल होता है कि हदीस में तो आया आतकहा वलदुहा कि इनके बच्चे ने इनको आजाद कर दिया है, और ए अहनाफ आप इस हदीस का दूसरा तर्जमा कर रहे हैं कि बच्चे ने आजाद नहीं किया बल्कि आजादी का मुस्तहिक बनाया है। तो हम जवाब देते हैं कि यहां और अहादीस भी हैं, चुनांचे हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से हदीस है और उसके अंदर जिक्र आता है कि आका के मरने के बाद जो है उम्मे वलद आजाद होती है, उसमें जिक्र है आका के मरने के बाद जो है उम्मे वलद आजाद होती है। तो हमने दोनों हदीसों में मुआफ़क़त पैदा कर दी कि दोनों पर अमल हो जाए, चुनांचे उस हदीस के जरिए हम कहते हैं कि आका के मरते ही उम्मे वलद आजाद हो जाएगी। और इस हदीस पर भी हमने अमल किया कि इस हदीस का माना यह है कि यह उम्मे वलद आजादी की मुस्तहिक हो चुकी है, लिहाजा जब यह आजादी की मुस्तहिक हो गई तो आजाद लोगों के कुछ अहकाम अभी से आ गए, आजाद लोगों के कुछ अहकाम अभी से आ गए। और आजाद लोगों का क्या हुक्म है, आजाद को बेचा नहीं जा सकता, आजाद को हिबा नहीं किया जा सकता, तो ये जो उम्मे वलद है इसको भी बेचा नहीं जा सकता, किसी दूसरे को इसका मालिक नहीं बनाया जा सकता। तो हमने दोनों हदीसों पर अमल किया, एक हदीस से पता चल रहा था कि मौत के बाद आजाद होंगी और इस हदीस से बजाहिर लग रहा था कि फिलहाल ही आजाद हो चुकी हैं, लेकिन हमने इसका माना यह किया कि आजादी की मुस्तहिक हो चुकी हैं। तो अब दोनों हदीसों में मुआफ़क़त आ गई, बजाहिर दोनों में तआरुज मालूम हो रहा था, तो हमने दोनों हदीसों पर अमल किया, एक हदीस से मौत के बाद आजादी का पता चल रहा था तो हमने भी कहा मौत के बाद ये उम्मे वलद आजाद होगी, और दूसरी हदीस से फिलहाल आजादी का पता चल रहा था तो हमने आजाद लोगों वाला हुक्म दे दिया कि अब इस उम्मे वलद को बेचना या हिबा करना जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम आतकहा वलदुहा, बवजह हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल के कि आपने फरमाया आतकहा वलदुहा कि इसे इसके बच्चे ने आजाद कर दिया है, अखबरा अन इताकिहा, हुजूर अलैहि सलाम ने उस उम्मे वलद के इताक की खबर दी, फयसबुतु बाजू मुवाजबी ही, लिहाजा इताक के बाज अहकाम जो है वो साबित हो जाएंगे, वह हुआ हुरमतुल बैई और वो बैअ का हराम होना है क्योंकि आजाद आदमी को बेचा या हिबा नहीं किया जा सकता। वली अन्नल जुज़ियता, यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं साहिब हिदाया, एक तो नकली दलील जिक्र कर दी यानी हदीस और एक अब अकली दलील जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वली अन्नल जुज़ियता कद हसलत बैन अलवाति वल मौतूअति बिवासितिल वलद, भाई आप पढ़ चुके हैं हुरमत मुसाहरत के मसले के अंदर कि जब खावंद अपनी बीवी से सोहबत करता है तो यह सोहबत औलाद तक पहुंचाने वाली है और औलाद जो है वो खावंद का भी जुज है और बीवी का भी जुज है, तो औलाद के अंदर दोनों के जुजों के अंदर इत्तेहाद आ गया, खावंद और बीवी एक दूसरे का जुज बन गए, जब दोनों एक दूसरे का जुज बन गए तो खावंद के उसूल और फुरू बीवी के उसूल और फुरू बन गए और बीवी के उसूल और फुरू वो खावंद के उसूल और फुरू बन गए, तो लिहाजा दोनों के उसूल और फुरू एक दूसरे पर हराम हो गए। और नीज जब खावन बीवी का जुज बन गया और बीवी खावन का जुज बन गई तो जुज तो इंसान पर हराम होता है, यह तो तकाजा करता है कि अब एक ही सोहबत के बाद बीवी को इंसान पर हराम हो जाना चाहिए, क्योंकि बीवी खावंद का जुज बन गई और अपना जुज इंसान पर हराम होता है। जैसे अपनी बेटी या पोती नवासी वगैरह यह इंसान का जुज है तो यह इस पर हराम होती है। तो यह हुरमत मुसाहरत तकाजा कर रही है कि बीवी को भी खावन पर हराम हो जाना चाहिए एक ही वती के बाद, लेकिन वहां जरूरत और हाजत की वजह से शरीयत ने बीवी को हराम करार नहीं दिया। भाई तो बात चल रही थी उम्मे वलद की, उम्मे वलद से आका की औलाद हुई है तो इसकी वजह से आका और इसकी इस बांदी के दरमियान जुजियत वाला ताल्लुक आ गया, दोनों एक दूसरे का जुज बन गए। भाई और किस तरह जूस बने, कहते हैं इस तरह के आका ने जब बांदी से सोहबत की तो बांदी के अंदर आका और बांदी का नुतफा मिल गए, आका और बांदी दोनों का नुतफा मिल गए और ऐसे मिले कि अब उनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। जब एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता तो दोनों एक दूसरे का जूस बन गए और फिर इसी नुतफे से आगे बच्चा बना, तो वो जो हमल है और वो जो बच्चा है वो भी दोनों का जूस है, तो ये बच्चा दोनों का जूस है, तो इस बच्चे के अंदर दोनों के अंदर इत्तेहाद आ रहा है, आका और बांदी के दरमियान इत्तेहाद आ रहा है, जुजियत आ रही है इस बच्चे के अंदर। लेकिन फिर जब ये बच्चे की पैदाइश हो गई तो अब आका और बांदी के दरमियान जुजियत जो थी वो हकीकतन बाकी न रही, दोनों एक दूसरे का जूस किस एतबार से थे, वो बच्चे के एतबार से कि बच्चे में दोनों के जूस मिल गए थे, दोनों के नुतफे मिल गए थे भाई, लेकिन वो बच्चा तो पैदा हो गया, पैदाइश के बाद अब वो मां से जुदा हो गया और ये बच्चा पहले मां के पेट में था, तो उस एतबार से ये बच्चा दोनों का जूस है और ये बच्चा किसका जूस था, बांदी का जूस था, तो लिहाजा आका और बांदी एक दूसरे का जूस बन गए थे। लेकिन फिर जब इस बच्चे की पैदाइश हो गई, ये बच्चा बांदी से जुदा हो गया, तो अब आका और बांदी हकीकतन एक दूसरे का जुज न रहे, क्योंकि वो जो जुज जिसमें दोनों का इत्तेहाद था वो तो बांदी से अलग हो गया, उस बच्चे की तो पैदाइश हो गई, बांदी से अलग हो गया, तो अब आका और बांदी के दरमियान हकीकतन जुजियत बाकी न रही, सिर्फ हुक्मन जुजियत बाकी रह गई, सिर्फ हुक्मन यानी हुक्म लगा दिया गया ये आका और बांदी एक दूसरे का जुज है, हकीकतन ये एक दूसरे का जुज नहीं है, क्योंकि वो जुज जिसके अंदर इत्तेहाद था वो तो अलग हो चुका है, वो बच्चा तो पैदा हो चुका है। बात समझ में आ गई। देखिए भाई साहिब हिदायत इसी को और बेहतरीन अल्फाज में जिक्र फरमाएंगे, तो कहते हैं वली अनल जुज इयत कद हसलत बैनल वाती इवल मौतू अति बिवासितिल वलदी, और इसलिए क्योंकि जुज होना वो हासिल हो चुका है वाती और मौतूआ के दरमियान, बिवासितिल वलदी बच्चे के जरिए बच्चे के वास्ते से, फइन्नल माएन कद इख्तलता, इसलिए क्योंकि दोनों के नुतफे जो है आका और बांदी दोनों, इसलिए फइन्नल माएन इसलिए क्योंकि उस मर्द और औरत दोनों का नुतफा जो है कद इख्तलता उसमें इख्तलात आ गया, वो आपस में मिल गए हैं, बिहैसु ला युमकिनुल मैज़ बैनहुमा, मैज़ ज़ा के साथ है, इसका माना है मुमताज करना जुदा करना, इन नल माइन कद इख्तलता इसलिए क्योंकि दोनों नुतफे तहकीक वो मिल गए हैं, बिहैसु इस तौर पर कि ला युमकिनुल मैज़ बैनहुमा कि इन दोनों के दरमियान इम्तियाज करना मुमकिन नहीं है, अला मा उरिफ फी हुरमतिल मुसाहरती उस वजह से जिसको हुरमत मुसाहरत के मसले में जान लिया गया, इल्ला अन्न बादल इन्फिसाली, ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं, एतराज ये कि जब ये बांदी आका का जुज बन गई तो इंसान तो अपने जुज का मालिक नहीं हो सकता, वो जुज फौरन आजाद हो जाता है, जैसे कोई शख्स अपने बेटे को खरीदे तो खरीदते ही बेटा खुद बखुद आजाद हो जाएगा, तो यहां पर भी जब ये बांदी आका का जुज हो गई तो ये जुजियत तो तकाजा कर रही है कि बांदी को फौरन आजाद हो जाना चाहिए, तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, मैंने तफसील जिक्र कर दी कि भाई जब बच्चे की पैदाइश हो गई, बच्चा जुदा हो गया, तो अब आका और बांदी के दरमियान हकीकतन जुजियत बाकी न रही, सिर्फ हुक्मन जुजियत है, यानी हमने हुक्म लगा दिया है एक दूसरे का जुज है, हकीकत में ये एक दूसरे का जुज नहीं, मालूम हुआ वो आजादी का सबब ज़ईफ हो गया, यह बांदी आका का जुज थी और यह जुजियत क्या तकाजा कर रही थी कि इसको फौरन आजाद होना चाहिए, लेकिन बच्चा पैदा हो चुका है लिहाजा वह जुजियत अब सिर्फ हुक्म के एतबार से बाकी है, हकीकतन जुज नहीं। जब सिर्फ हुक्मन जुज बाकी है तो आजादी का सबब ज़ाइफ हो गया, इंसान पर अपना जुज आजाद होता है लेकिन यहां जुजियत क्या हो गई, ज़ाइफ हो गई, सिर्फ हुक्मन है। जब जुजियत सिर्फ हुक्मन है तो इसलिए बांदी फिलहाल आजाद नहीं होगी, अलबत्ता आजाद लोगों वाला हुक्म आ जाएगा कि इसको बेचा नहीं जा सकता और हिबा नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं इल्ला अन्ना बादल इन्फिसाली, मगर यह कि जुदाई के बाद, किसकी जुदाई, बच्चे की मां से जुदाई यानी बच्चे की पैदाइश हो गई। इल्ला अन्ना बादल इन्फिसाली, मगर यह के बच्चे की जुदाई के बाद, तब कल जुजियत हुक्मन ला हकीकतन, जुजियत बाकी रही हुक्म के एतबार से न के हकीकत के एतबार से, फज़ऊफ़ सबबु, तो आजादी का सबब ज़ईफ हो गया, फ़औजब हुक्मन मुअज्जलन इला मा बादल मौती, फ़औजबा तो इसने साबित कर दिया हुक्मन मुअज्जलन एक मुअख्खर हुक्म को। यह जुजियत आई तो है लेकिन यह जुजियत ज़ईफ है, हुक्मन है सिर्फ हकीकतन नहीं, तो लिहाजा इसकी वजह से आजादी आएगी तो जरूर लेकिन फिलहाल नहीं, मौत के बाद आएगी। तो यह माना है फ़औजबा हुक्मन मुअज्जलन इला मा बादल मौती, तो इसने साबित किया ऐसा हुक्म जो मुअख्खर है मौत के मा बाद तक भाई, व बका उल जुज़ियत हुक्मन बेअतबार नसब। अच्छा यहां से अब एक और एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया, अहनाफ की बातें बहुत गहरी होती हैं भाई। भाई देखिए अब सवाल पैदा होता है, आपने कहा कि आका और बांदी में जुजियत आ गई, किसकी वजह से आई, औलाद की वजह से आई। अगर औलाद की वजह से जुजियत आ चुकी है तो जैसे आका के मरने के बाद ये इसकी ममलूका बांदी आजाद हो जाएगी, क्यों आजाद होगी, क्योंकि दोनों में जुजियत आ चुकी है। तो इसका तकाजा यह है कि अगर बीवी अपने खावंद की मालिकन बन जाए तो खावंद को भी इस मालिकन के मरने के बाद आजाद होना चाहिए। मसलन देखो, एक गुलाम ने एक आजाद औरत से निकाह कर लिया, गुलाम ने एक आजाद औरत से निकाह कर लिया और बाद में इसी आजाद औरत ने अपने इस खावंद को खरीद लिया, तो खरीदते ही आपने पढ़ा है निकाह खत्म। अब ये जो खावंद है ये इस बीवी का ममलूक हो गया और इस खावंद से इस औरत की औलाद भी हो चुकी है, मालूम हुआ दोनों में जुजियत वाला ताल्लुक भी आ चुका है। जब ये ममलूक अपनी मालिकन का जुज है तो यह तकाजा करता है कि जिस दिन यह मालिकन मरेगी ये इसके इस साबका खावंद को जो इस वक्त इसका ममलूक है इसको मालिकन के मरने पर आजाद होना चाहिए क्योंकि जुजियत है जी। आपने भी हमें क्या बताया कि जुजियत की वजह से आजादी मुअख्खर हो गई, मौत के वक्त आजादी साबित होगी। तो लिहाजा जब एक औरत अपने खावंद की मालिकन बन गई जिसके साथ जुजियत साबित है, औलाद हो चुकी है, तो लिहाजा यह तकाजा करता है कि दोनों में चूंकि जुजियत वाला ताल्लुक है लिहाजा इस औरत के मरते ही इसके इस ममलूक को भी आजाद होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि आप कहते हैं ये ममलूक औरत यानी मालिकन के मरने पर भी आजाद नहीं होगा। उम्मे वलद तो आजाद हो जाती है जब आका मरता है, लेकिन यह साबिका खावन जो है यह मालिकन के मरने पर आजाद नहीं हो रहा, अगरचे यहां भी जुजियत वाला ताल्लुक मौजूद है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई इस जुजियत के अंदर नसब का एतबार है और नसब मर्दों की तरफ से चलता है, इस जुजियत में नसब का एतबार है और नसब मर्दों की तरफ से चलता है औरतों की तरफ से नहीं, लिहाजा मर्द की जुजियत साबित हो रही है अपनी बांदी में तो वहां मर्द की तरफ से मामला है, लिहाजा यह बांदी जो है आका के मरने के बाद आजाद होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो जो मालिकन है अपने खावंद की, वो जो इसका अब ममलूक बन गया है, वहां वो तो औरत है और औरत की तरफ से तो नसब नहीं चलता, तो जब नसब नहीं चलता औरत की तरफ से तो इस औरत का जुज भी इस औरत के मरने पर आजाद नहीं होगा। फर्क समझ में आया? तो कहते हैं वह बका उल जुजियत हुक्मन, और हुक्म के एतबार से जुजियत का बाकी रहना बे एतबार इन नसब, यह नसब के एतबार से होता है। वह हुआ मिन जानिब रिजाली, और नसब तो मर्दों की जानिब से होता है। फकदल हुर्रियत तस्बुतु फी हक हिम, तो इसी तरह हुर्रियत जो है वह मर्दों के हक में साबित होगी, लाफी हक हिन ना औरतों के हक में साबित नहीं होगी। वह जुजियत नहीं साबित तो हुर्रियत भी नहीं साबित। हत्ता इदा मलकतिल हुर्रतु ज़ौजहा, यहां तक कि अगर कोई आजाद औरत वो अपने खावंद की मालिकन बन गई, वकद वलदत मिनहू, और हाल यह है कि ये मालिकन इस खावंद से बच्चे को जन्म दे चुकी है, ला यातिकु बिमौतिहा, तो ये खावंद इस मालिकन की मौत से आजाद नहीं होगा। भाई व सबूत इत्क मुअज्जलिन युस्बितु हक़ल हुर्रियत फिल हाली, भाई देखिए ये जो उम्मे वलद है ये फिलहाल आजाद है या फिलहाल आजादी की मुस्तहिक बनी है? सिर्फ ये आजादी की मुस्तहिक बनी है, मरने के बाद इसने आजाद होना है। तो जब ये फिलहाल आजादी की मुस्तहिक बन गई तो आजाद लोगों वाले अहकाम भी आ जाएंगे, लिहाजा इसकी बया भी मना और हिबा भी माना। यह माना है वह सबूत इत्क मुअज्जलिन, और साबित होना ऐसी आजादी का जो मुअख्खर है, ऐसी आजादी का साबित होना जो मुअख्खर है। युस्बितु हक़ल हुर्रियत फिल हाली, यह साबित कर देगा आजादी के हक को फिलहाल ही। फयमनउ जवाज़ल बैअ व इखराजहा ला इलल हुर्रियत फिल हाली, लिहाजा ममनू होगा। आखिर में आ रहा है फिलहाल, उस फिलहाल को यमनाऊ से जोड़ें। फयमनउ जवाज़ल बैअ व इखराजहा ला इलल हुर्रियत फिल हाली, लिहाजा फिलहाल ममनू होगा इस बांदी की बैअ का जायज होना। व इखराजहा ला इलल हुर्रियत, और इसको निकालना यानी अपनी मिल्कियत से निकालना, ला इलल हुर्रियत गैर हुर्रियत की तरफ। भाई ये उम्मे वलद बन गई, इसको बेचना भी जायज नहीं और किसी दूसरे को मालिक बनाना भी जायज नहीं। जब किसी दूसरे को मालिक बनाया जाता है तो ममलूक उस शख्स की मिल्कियत से निकल जाता है, लिहाजा इस बांदी को भी अपनी मिल्कियत से निकालना जायज नहीं। इल्ला इलल हुर्रियति, सिवाय आजादी की तरफ। आजादी में भी अपनी मिल्कियत से निकाल देता है इंसान, लेकिन आजाद करना इसका जायज है। आजादी के अलावा किसी और तरीके से मिल्कियत से निकालना जायज नहीं, यही बयान कर रहे हैं। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वसुबूत इत्क मुअज्जलिन युस्बितु हक़ल हुर्रियत फिल हाली, और ऐसी आजादी का साबित होना जो मुअख्खर है यह साबित करता है आजादी के हक को फिलहाल ही। फयमनउ जवाज़ल बैअ व इखराजहा ला इलल हुर्रियत फिल हाली, लिहाजा यह फिलहाल मना करता है इस बांदी की बै के जायज होने को भी। व इखराजहा ला इलल हुर्रियत, और इसको अपनी मिल्कियत से निकालना गैर आजादी की तरफ, आजादी के अलावा की तरफ इसको अपनी मिल्कियत से निकालना, इसको भी यह मना करता है। इसको भी यह मना करता है यानी इसको आजादी के अलावा अपनी मिल्कियत से निकालना भी ममनू है। भाई वयूजिबु इत्कहा बाद मौती ही, और यह साबित करता है इसकी आजादी को उसकी मौत के बाद। ये जो बांदी के अंदर मुअख्खर आजादी साबित हो रही है, ये बांदी के अंदर जो मुअख्खर आजादी साबित हो रही है, जो पीछे आया ना वह सबूत व इत्क मुअज्जलिन, और ऐसी आजादी जो मुअख्खर है यानी फिलहाल नहीं है, तो ये इत्क मुअख्खर का साबित होना ये जो है यूजिबु इत्कहा बाद मौती ही, ये इसकी आजादी को साबित कर देता है इस आका की मौत के बाद। वकदा इदाका न बाजुहा ममलूकन लहू, और इसी तरह जब इस बांदी का बाज जो है वो उसका ममलूक हो। सूरत मसला ये, एक बांदी दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका है, और आपने पढ़ा है कि जब एक बांदी के अंदर दो या ज्यादा आदमी शरीक हों तो किसी एक के लिए भी उससे सोहबत जायज नहीं, लेकिन इन दोनों में से एक ने उसके साथ सोहबत कर ली और इस बांदी ने बच्चे को जन्म दिया, और फिर उस वती करने वाले ने दावा कर दिया कि ये मेरा बच्चा है, तो याद रखो इस सूरत में ये बांदी उसकी उम्मे वलद बन जाएगी और ये सारी बांदी का मालिक बन जाएगा। तो जब ये अपने शरीक के हिस्से का भी मालिक बन गया है तो इसको अब जमान देना पड़ेगा, उस हिस्से की कीमत अदा करना पड़ेगी। तो यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वकदा इदा का नबाजुहा ममलूकन लहू, और इसी तरह होगा जब के उस बांदी का बाज हिस्सा जो है इसका ममलूक हो, यानी ये इसकी उम्र वलद बन जाएगी। लिअन्न अलिस्तीला दला यतजज़ाउ, इसलिए क्योंकि उम्मे वलद बनाना जो है उसकी तकसीम नहीं हो सकती, उसकी तकसीम नहीं हो सकती। भाई आपने पीछे पढ़ा था इमाम आजम अबू हनीफा रहमला के नजदीक उम्मे वलद में तकसीम हो सकती है, और यहां साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि उम्मे वलद में तकसीम नहीं हो सकती, तो बजाहिर दोनों बातों में तआरुज नजर आ रहा है। भाई पीछे तफसील जिक्र हुई थी, साहिबैन के नजदीक इस्तीलाद में तदबीर में तकसीम नहीं हो सकती, दो शरीकों में से एक अपने गुलाम को मुदब्बर बनाएगा तो सारा गुलाम ही मुदब्बर बन जाएगा, इसी तरह दो शरीकों में से एक उस बांदी को उम्मे वलद बनाएगा तो सारी ही उम्मे वलद बन जाएगी, क्योंकि साहिबैन के नजदीक इस्तीलाद और तदबीर में तकसीम नहीं हो सकती, जबकि इमाम साहब के नजदीक इताक के अंदर तकसीम हो सकती है, और जब इताक के अंदर तकसीम होती है तो तदबीर और इस्तीलाद ये भी इताक की फरा हैं, क्योंकि इन्होंने भी बिलाखिर आजाद ही होना है, तो ये भी इताक की फरा है, तो जब इताक के अंदर तकसीम हो सकती है तो तदबीर और इस्तीलाद के अंदर भी इमाम साहब के नजदीक तकसीम हो सकती है, लेकिन ये उस वक्त है, ये उस वक्त है जब इस बांदी के अंदर तबद्दुल मिल्क मुमकिन हो, तबद्दुल मिल्क मुमकिन हो, अगर तबद्दुल मिल्क मुमकिन ना हो तो फिर इस्तीलाद में तकसीम होगी। तवज्जो है, देखो बात को अच्छी तरह समझ लें, एक बांदी दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका है, इन दोनों में से एक ने इसको उम्मे वलद बनाया तो साहिबैन के नजदीक उम्मे वलद की तकसीम नहीं हो सकती, लिहाजा ये सारी बांदी उम्मे वलद बन गई और ये इसी शरीक की हो गई, तो अब इसको जमान देना पड़ेगा दूसरे को, जबकि इमाम साहब के नजदीक जब दो शरीकों में से एक ने अपने हिस्से को उम्मे वलद बनाया है, उम्मे वलद बनाया है, तो दूसरा हिस्सा अभी आम बांदी है, और आम बांदी तो तबद्दुल मिल्क को कबूल कर लेती है, आम बांदी तो तबद्दुल मिल्क को कबूल कर लेती है, लिहाजा वो हिस्सा जो है वो भी इसकी तरह मुंतकिल हो जाएगा। इस्तीलाद में तकसीम आई थी लेकिन फिर दूसरे का हिस्सा भी इसी की तरफ मुंतकिल हो गया और ये सारी बांदी उम्मे वलद बन गई, और चूंकि ये शरीक अपने साथी के भी हिस्से का मालिक बन गया है लिहाजा इसको अब उस हिस्से की कीमत देना पड़ेगी, जमान देना पड़ेगा, लेकिन ये उस सूरत में है जब तबद्दुल मिल्क बांदी में मुमकिन हो, अगर मुमकिन ही ना हो तो फिर वहां तकसीम ही रहेगी। मसलन देखो, एक बांदी दो आदमियों के दरमियान मुश्तरका है, दोनों ने उसको मुदब्बरा बना दिया जी। तो ये मुदब्बरा है, और आपने पढ़ा है मुदब्बरा इंतकाल मिल्क को कबूल नहीं करती, उसको बेचा नहीं जा सकता, उसको हिबा नहीं किया जा सकता, तो ये जो मुदब्बरा है इसको इन शरीकों में से एक ने उम्मे वलद बना दिया जी। जब इस एक ने इसको उम्मे वलद बनाया है तो साहिबैन के नजदीक तो सारी बांदी ही उम्मे वलद बन गई, क्योंकि इस्तीलाद में तकसीम नहीं हो सकती, जबकि इमाम साहब के नजदीक तो इस्तीलाद में तकसीम हो सकती है, लिहाजा इस आदमी का हिस्सा उम्मे वलद बन गया। अब दूसरे आदमी के हिस्से ने भी इसकी तरह मुंतकिल होना है, लेकिन दूसरे आदमी का हिस्सा तो मुदब्बरा है जी। क्या है, इसका हिस्सा भी पहले मुदब्बरा था लेकिन अब उम्मे वलद बन गया, तो दूसरे का हिस्सा तो मुदब्बरा है, और मुदब्बरा वो तो इंतकाल मिल को कबूल नहीं करती, लिहाजा यहां वो इस दूसरे के हिस्से का मालिक नहीं बनेगा, तो निसफ बांदी उम्मे वलद रहेगी और निसफ मुदब्बरा रहेगी। बात समझ में आ गई, तो यहां जो आया लिअन्न अलिस्तीला दला यतजज़ाउ कि इस्तीला जो है वो तकसीम को कबूल नहीं करता, ये उस सूरत में है जब उस बांदी में तबद्दुल मिल्क हो सके, और अगर वो मुदब्बरा है तो तबद्दुल मिल्क नहीं हो सकता, तो फिर इस्तीलाद में तकसीम आएगी। भाई इमाम साहब के नजदीक मसला समझ में आ गया, तो कहते हैं लियानल इस्तीलाद ला यतजज़ाउ, इसलिए क्योंकि उम्मे वलद बनाना जो है इसकी तकसीम नहीं हो सकती, फइन्नहु फरउन नसबी, इसलिए क्योंकि ये इस्तीलाद फरा है नसब की, ये इस्तीलाद फरा है नसब की, और नसब के अंदर तकसीम नहीं हो सकती, नसब की तकसीम नहीं हो सकती, क्योंकि नसब की बुनियाद है हमल ठहरने पर, और हमल तो एक ही आदमी से ठहरेगा, हमल तो कोई भी हमल ठहरे वो एक ही आदमी के नुतफे से वो हमल ठहरेगा, तो लिहाजा उस हमल ठहरने में जब हमल ठहरने में तकसीम नहीं तो उसी की वजह से नसब साबित होगा, तो नसब के अंदर भी तकसीम नहीं हो सकती। और इसी नसब पर बुनियाद है उम्मे वलद होने की, बांदी से जो बच्चा है उसका नसब साबित होता है ना, तब ही वो उम्मे वलद बनती है। तो इस उम्मे वलद बनाने की बुनियाद किस पर है? नसब पर। तो ये नसब की फरा है भाई, तो जब नसब के अंदर तकसीम नहीं हो सकती तो उम्मे वलद के अंदर भी तकसीम नहीं हो सकती। ये माना है लि अन इस्तीला द ला यतजज़ऊ, इसलिए क्योंकि इस्तीला जो है उसकी तकसीम नहीं हो सकती। फ इन नहु फर उन नसबी, इसलिए क्योंकि जो इस्तीलाद है ये नसब की फरा है। फयो अता बरूबी ही, तो लिहाजा इस इस्तीलाद को कियास किया जाएगा अपनी असल पर यानी नसब पर, और नसब में तकसीम नहीं तो इस्तीलाद में भी तकसीम नहीं है भाई। आगे देखिए, काला वलहू वत उहा वस्तिखदाम उहा व इजारत उहा व तजवी जुहा। काला, इस काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। साहिब कुदूरी अब वो तसरुफात बतला रहे हैं जो उम्मे वलद में जायज हैं। उम्मे वलद को बेचना या हिबा करना तो जायज नहीं, अलबत्ता बाकी तसरुफात जायज हैं। आका इससे खिदमत भी ले सकता है, आका इससे इजारे पर भी दे सकता है, किसी दूसरे की खिदमत भी करवा सकता है, और नीज आका इसका निकाह भी किसी और से करवा सकता है। तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वलहू वत उहा, और आका के लिए जायज है इस उम्मे वलद से वती वस्तिखदामुहा और इससे खिदमत लेना, व इजारतुहा और आका के लिए जायज है इस बांदी का इजारा यानी किसी दूसरे को खिदमत पर देना, व तजवीजुहा और आका के लिए जायज है इसका निकाह करवाना। लिअन्नल मिल्का फीहा काइमुन, इसलिए क्योंकि आका की मिल्कियत इसके अंदर कायम है मौजूद है। फअशबहतिल मुद्दा मुदब्बरा था, तो यह मुदब्बरा के मुशाबे हुई, और मुदब्बरा के अंदर यह सारे तसरुफात जायज हैं, तो उम्मे वलद में भी यह सारे तसरुफात जायज हैं। वला यसबुतु नसबु वलदिहा इल्ला अय्या अतरिफा बिही, मैंने आपको बतलाया था कि बांदी से जो औलाद हो वो खुद बखुद आका की शुमार नहीं होती, बल्कि आका का इकरार और एतराफ जरूरी है, वही जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वला यसबुतु नसबु वलदिहा, और बांदी की औलाद जो है उसका नसब साबित नहीं होता, इल्ला अन यातरिफ बिही, मगर यह कि आका उसका एतराफ कर ले। वकाल शाफी रहमहुल्लाह ताला, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं यसबुतु नसबुहु मिनहु, कि बांदी के बच्चे का नसब आका से साबित हो जाता है। वह इल्लम यद्दाई, अगरचे आका दावा न करे, तो हमारे नजदीक बांदी के बच्चे का नसब आका के दावे के बगैर साबित नहीं, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक आका के दावे के बगैर ही बांदी के बच्चे का नसब आका से साबित है। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमुल्ला, और इमाम शाफी रहमुल्ला फरमाते हैं यसबुतु नसबु हु मिनहु, के बांदी के बच्चे का नसब आका से साबित हो जाता है। व इल्लम यद्दाई, अगर चे आका उसका दावा न करे, लिअन्नहु लम्मा सबतन नसबु बिल अक्दी, इसलिए क्योंकि ये नसब जब आकद यानी निकाह के जरिए साबित हो जाता है, फली अन यसबुता बिल वती, तो ये कि यह नसब वती के जरिए भी साबित हो जाए। आखिर में आ रहा है औला, ये ज्यादा लायक है भाई। जब एक शख्स किसी औरत से निकाह कर लेता है तो उस औरत से जो भी औलाद पैदा होगी वह खुद बखुद खावंद की शुमार होगी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक है अक़्दे निकाह और एक है वती। जब अक़्दे निकाह के जरिए नसब खुद बखुद साबित हो जाता है तो वती जो है वो तो ज्यादा औलाद तक पहुंचाने वाली है, लिहाजा उसके जरिए बतरीके औला नसब साबित होगा। तो फली अं यसबूता बिल वती, तो यह कि नसब वती के जरिए साबित हो जाए। वह अन नहु अक्सरु इफ़ज़ा अन, और हाल यह है कि यह वती जो है यह ज्यादा पहुंचाने वाली है यानी औलाद तक, तो औला इसके जरिए बतरीके औला नसब साबित होगा। यह जरा इबारत पर गौर कीजिए, इबारत देखिए फली अं यसबूता बिल वती व अन नहु अक्सरु इफ़ज़ा अन, ये इस जुमले को जरा दरमियान से निकाल दें। व अन्नहु अक्सरु इफ़ज़ान, और हाल यह है कि वती ज्यादा पहुंचाने वाली है औलाद तक, इसको जरा निकाल दें और ये औला को पीछे जोड़ दें। फली अं यसबुता बिल वती औला, तो ये के वती के जरिए नसब साबित हो जाए औला, ये ज्यादा लायक है। जब निकाह के जरिए नसब साबित होता है तो वती के जरिए नसब का साबित होना बतरीके औला होगा, क्यों? क्योंकि वती औलाद तक ज्यादा पहुंचाने वाली है अकदे निकाह के मुकाबले में। भाई फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिया नहू लम्मा सबतन नसबु बिल आकदी, इसलिए क्योंकि जब आकदे निकाह के जरिए नसब साबित हो जाता है, फली अं यसबुता बिल वती, तो ये कि नसब वती के जरिए साबित हो जाए, वह अन्नहू अक्सर इफ़ज़ान, और हाल ये है कि वती जो है औलाद तक ज्यादा पहुंचाने वाली है, तो ये कि नसब वती के जरिए साबित हो जाए, औला ये बतरीके औला होगा। तर्जमा समझ में आ गया। आगे देखिए वलाना, अब हमारी दलील आ गई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील गुजर गई। वो फरमाते हैं कि बांदी से जो भी बच्चा हो वो खुद बखुद आका का शुमार होगा। हम कहते हैं नहीं, आका का दावा जरूरी है। अब हमारी दलील आ गई वलाना, और हमारी दलील ये है कि अन्नवक अल अमती युक्सदु बिहा कजा उशहवती दून अल वलदी। हम कहते हैं कि बांदी के साथ जो वती है उसके जरिए मकसूद औलाद नहीं होती बल्कि सिर्फ कजाए शहवत होती है। बांदी के साथ वती में सिर्फ शहवत को पूरा करना मकसूद होता है, औलाद मकसूद नहीं होती, क्योंकि औलाद के अंदर वहां मानेअ मौजूद है। वहां औलाद के अंदर मानेअ मौजूद है। क्या मानेअ है? भाई देखिए, आप पढ़ चुके हैं कि एक है आम बांदी, एक है उम्मे वलद। आम बांदी की जो कीमत होती है, उम्मे वलद की कीमत कम हो जाती है, उसके मुकाबले में सिर्फ एक तिहाई रह जाती है साहिबैन के नजदीक। मसलन आम बांदी थी तो इसकी कीमत थी 300 दिरहम, तो जब इसको उम्मे वलद बनाएंगे तो अब इसकी कीमत तीन में से सिर्फ एक हिस्सा रह जाएगी, यानी सिर्फ 100 दिरहम साहिबैन के नजदीक। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक आप पढ़ चुके हैं कि उम्मे वलद जो है वो गैर मुतकविम है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। हत्ता कि अगर कोई गासिब उम्मे वलद को गसब करके ले जाए और फिर उसी के पास वो उम्मे वलद हलाक हो गई तो गासिब पर कोई जमान नहीं आएगा, क्योंकि उम्मे वलद इमाम साहिब के नजदीक गैर मुतकविम है। भाई तो लिहाजा मालूम हुआ बांदी के साथ जो वती की जाती है वो शहवत को पूरा करने के लिए की जाती है, औलाद के लिए नहीं, क्योंकि औलाद से वहां मान्या मौजूद है। और वो मान्या क्या? कि आका की औलाद होगी बांदी से, तो बांदी ही गैर मुतकविम हो जाएगी इमाम साहिब के नजदीक, इसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। जबकि साहिबैन के नजदीक भी तीन में से सिर्फ एक हिस्सा कीमत रह जाएगी। अगर पहले 300 दिरहम कीमत थी तो अब सिर्फ 100 दिरहम कीमत रह जाएगी। और नीस इसलिए भी कि बांदी से जो औलाद है उसको आला शुमार नहीं किया जाता। भाई बांदी की औलाद को आला शुमार नहीं किया जाता, तो लिहाजा बांदी से औलाद के अंदर मान्या मौजूद है। अब देखिए फिर किताब पर वलाना, और हमारी दलील यह है कि नवत अल अमती युक्सदु बिही कजा उस शहवती, कि बांदी की जो वती होती है उसके जरिए कजाए शहवत मकसूद होती है, दून अल वलदी औलाद नहीं, लिवजूद इल मानिअ अनहु, इसलिए क्योंकि औलाद से मान्या पाया जा रहा है। क्या मान्या है? कि इमाम साहब के नजदीक उम्मे वलद बनेगी तो गैर मुतकविम हो जाएगी, और साहिबैन के नजदीक तीन में से सिर्फ एक हिस्सा कीमत रह जाएगी, तो यह भी मान्या है। और नीज बांदी की औलाद को उम्दा भी नहीं समझा जाता, तो यह सब चीजें मान्या है औलाद से। भाई तो कहते हैं फला बुद्ध मीनत दावती, तो लिहाजा बांदी के अंदर दावा जरूरी है। तो यहां दावत का लफ्ज आया। भाई दावत का क्या माना? दावा करना। और मैंने आपको बतलाया कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नसब का दावा किया जाए तो उसके लिए दावत का लफ्ज इस्तेमाल होता है दाल के कसरा के साथ, तो आप इसको दाल के फतहा के साथ भी पढ़ सकते हैं और दाल के कसरा के साथ भी पढ़ सकते हैं। भाई तो कहते हैं फला बुद्ध मीनत दावती, तो लिहाजा बांदी के अंदर दावा जरूरी है, बांदी से औलाद हो तो उसमें दावा जरूरी है। बिमन जिलती मिलकिल यमीनी मिन गैरी वक्तिन, मिलके यमीन भाई यानी बांदी मुराद है जिसके अंदर मिलके यमीन है। भाई तो देखो भाई, एक वो बांदी है जिसके साथ आका सोहबत करता है और एक वो बांदी है जिससे आका सोहबत नहीं करता। तो जिस बांदी से आका सोहबत नहीं करता, अगरचे वो इसकी बांदी है लेकिन आका उसे सोहबत नहीं करता, और इस किस्म की बांदी जब बच्चे को जन्म दे तो आका का शुमार नहीं होगा क्योंकि आका तो इसे वती ही नहीं करता जी। तो हम कहते हैं कि ये बांदी जिससे आका वती करता है ये भी उसी बांदी की तरह है जिससे आका वती नहीं करता। और जिससे आका वती नहीं करता उससे तो बच्चा पैदा हो तो आका का शुमार नहीं होता, तो इससे भी जो बच्चा पैदा होगा जिससे आका वती करता है, इससे भी जो बच्चा पैदा होगा वो भी आका का शुमार नहीं होगा, इल्ला ये कि आका खुद उसका दावा कर दे। तो ये बांदी जो मौतुआ है ये भी किसकी तरह हो गई, उस बांदी की तरह जो गैर मौतुआ है, दोनों का हुक्म एक ही होगा। तो ये माना है बिमन जिलती मिल की यमीन इमीन गैर वक्त इन, तो ये बांदी भी उस बांदी के उस मिल के यमीन के दर्जे में है जो गैर वती से है, यानी जिसके साथ आकावती नहीं करता। बिखिलाफिल आकदी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि आकदे निकाह जब उसके जरिए नसब साबित हो जाता है तो वती के जरिए बतरीके औला नसब साबित होना चाहिए। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई आकदे निकाह के जरिए मकसूद ही औलाद होती है, लिहाजा वहां पर खुद बखुद नसब साबित हो जाएगा, और बांदी के साथ जो वती की जाती है वहां औलाद मकसूद नहीं होती, लिहाजा वहां खुद बखुद नसब साबित नहीं होगा। तो बिखिलाफ العقد بخلاف عقد النكاح के لان الولد يتعين مقصودا منه, इसलिए क्योंकि बच्चा जो है वो मुतायन होता है निकाह से मकसूद होकर, बच्चा ही मकसूद होता है निकाह से। फला हाजत الى الدعوه, लिहाजा कोई हाजत नहीं है दावा करने की, निकाह के अंदर कोई जरूरत नहीं है दावा करने की, क्योंकि निकाह के अंदर मकसूद ही औलाद है भाई। तो जो भी औलाद होगी खुद बखुद उसका नसब खावन से साबित हो जाएगा भाई। आगे देखिए, फइन जाअत बादा ज़ालिका बिवलदिन सबता नसबहु बिगैर इकरार, भाई मैंने आपको बतलाया था फिराश भाई, फिराश ये जो मनकूहा है ये आदमी का फिराश है, खावंद का फिराश है। फिराश का वैसे माना तो है बिछोना, लेकिन यहां फिराश इस्तिलाही लफ्ज है। फिराश का माना है किसी औरत का किसी मर्द के बच्चों को जन्म देने के लिए मुख्तस हो जाना। जब एक शख्स एक औरत से निकाह कर लेता है तो इसका मतलब यह है कि यह औरत अब इस मर्द के बच्चों को जन्म देगी। तो ये जो मनकूहा होती है ये खावंद का फिराश है। और मैंने बतलाया था कि ये जो फिराश है ये तीन किस्म पर है, एक फिराश कवी है, एक फिराश मुतवस्सित है, और एक फिराश ज़ईफ है। फिराश कवी मनकूहा बीवी है, ये फिराश कवी है, हत्ता कि इससे जो भी बच्चा पैदा होगा खुद बखुद खावंद का शुमार होगा, और अगर खावंद बच्चे की नफी करना चाहता है तो वैसे नफी नहीं कर सकता बल्कि लियान करना पड़ेगा। जबकि फिराश ज़ईफ जो है वह आम बांदी है, आम बांदी से जो बच्चा पैदा हो वह खुद ब खुद आका का शुमार ही नहीं होता जब तक आका उसका एतराफ न कर ले। और फिराश मुतवसित ये उम्मे वलद है, यानी वो बांदी जिससे एक दफा एक बच्चा हो चुका है और आका कह चुका है ये मेरा बच्चा है, तो ये उम्मे वलद बन गई। जब ये उम्मे वलद बन गई मालूम हुआ आका इसके जरिए बच्चों की पैदाइश चाहता है, इस बांदी के जरिए आका अपने बच्चों की पैदाइश चाहता है, तो ये आका का फिराश हो गई। और ये फिराश मुतवस्सित है, यानी ये मनकूहा की तरह ज्यादा कभी फिराश भी नहीं और ये आम बांदी की तरह बहुत कमजोर फिराश भी नहीं, बल्कि मुतवस्सित दर्जे का फिराश है। और मुतवस्सित दर्जे का बाई लिहाज है कि इस उम्मे वलद से जब आगे आइंदा कोई और औलाद होगी वो खुद बखुद आका की शुमार होगी बगैर दावे के ही, लेकिन अगर आका उस औलाद की नफी करना चाहे तो बगैर लियान के भी नफी कर सकता है जी। बगैर लियान के भी नफी कर सकता है। तो फिराश कितनी किस्म के? तीन, एक फिराश कवी और वो मनकूहा बीवी है, और दूसरा फिराश मुतवसित और वो उम्मे वलद है, और तीसरा फिराश ज़ईफ वो जो आम बांदी है भाई। और बीवी के अंदर जो भी बच्चा होगा खुद बखुद खावन का शुमार होगा और बगैर लियान के नफी भी नहीं हो सकती, जबकि आम बांदी जो है वो फिराश ज़ईफ है, उसके अंदर जो बच्चा होगा वो खुद बखुद आका का शुमार ही नहीं होगा। और जो उम्मे वलद है जो पहले एक बच्चे को जन्म दे चुकी है आका के लिए, तो ये उम्मे वलद फिराश मुतवसित है, इससे जो अगला बच्चा होगा वो खुद बखुद आका ही का शुमार होगा। अलबत्ता अगर आका उस बच्चे की नफी करना चाहता है तो बगैर लियान के भी नफी कर सकता है। बात समझ में आ गई। अब इसी फिराश मुतवसित को बयान कर रहे हैं साहिबे हिदाया। तो कहते हैं फइन जा अत बादा जालिका बी वलदिन, तो अगर उम्मे वलद जो है इसके बाद एक और बच्चे को ले आई, यानी उसने एक और बच्चे को जन्म दिया, सबता नसबुहू बिगैरी इकरारिन, तो इस बच्चे का नसब आका के इकरार के बगैर ही आका से साबित हो जाएगा। मानाहू, माना यह है, यानी साहिब कुदूरी के कौल की वजाहत कर रहे हैं साहिब हिदाया, कहते माना हूं बादा तेराफी मिन हु बिल वलदिल अव्वली, के पहले बच्चे का एतराफ आका की तरफ से होने के बाद, ये जो बांदी है, ये जो उम्मे वलद है, इसने बच्चे को जन्म दिया, ये खुद ब खुद आका का शुमार होगा
जी।
ये खुद ब खुद आका का शुमार होगा। साहिब हिदाया फरमा रहे हैं साहिब कुदूरी के कौल का मतलब यह है कि जब पहले बच्चे का आका एतराफ कर चुका हो तो फिर ये दूसरा बच्चा खुद ब खुद आका का शुमार होगा। ये माना है, माना हु साहिब कुदूरी के कौल का माना यह है, बाद एतराफ मिन हु बिल वलदिल अव्वली, के बाद इसके कि जब आका की तरफ से पहले बच्चे का एतराफ हो चुका हो, लिअन्नहु बिदअवल वलदिल अव्वली तअय्यनल वलदु मकसूदन मिनहा, इसलिए क्योंकि पहले बच्चे के दावे से तअय्यनल वलदु मकसूदन मिनहा, ये बात मुतायन हो गई कि औलाद ही मकसूद है इस बांदी से। जब आका ने पहले बच्चे का एतराफ कर लिया था, मालूम हुआ इस बांदी से औलाद मकसूद है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं लिअन्नहु बिदअवल वलदिल अव्वली, इसलिए क्योंकि पहले बच्चे के दावे की वजह से तअय्यनल वलदु मकसूदन मिनहा, ये बात मुतायन हो गई कि औलाद ही मकसूद है इस बांदी से, फसारत फिराशन, तो ये बांदी भी आका का फिराश हो गई, कल माकूदति बादन निकाही, जैसे वो औरत जिससे अकद किया गया है वो फिराश बन जाती है बादन निकाही, निकाह के बाद। कल माकूदति जिससे अकद किया गया है, यानी बीवी मुराद है, जैसे वो फिराश बन जाती है बादन निकाही, किसके बाद, निकाह के बाद, तो ये बांदी भी फिराश बन गई। फिर तर्जमा देख लीजिए, फसारत फिराशन, तो ये उम्मे वलद इस आका का फिराश बन गई, कल माकूदती बादन निकाही, जैसे माकूदा बीवी जो है जिसे आकद किया गया है वो फिराश बन जाती है खावंद का बादन निकाही, निकाह के बाद। इल्ला अन्नहु इदा नफाहु यंतफी बिकौलिही, मगर ये कि आका जब इस बच्चे की नफी करेगा तो यंतफी बिकौलिही, तो ये दूसरा बच्चा मुंतफी हो जाएगा बिकौलिही, आका के कौल से ही। उम्मे वलद ने बच्चे को जन्म दिया तो ये खुद ब खुद आका का शुमार, लेकिन अगर आका नफी करेगा तो बच्चा मुंतफी हो जाएगा, अब ये आका का बच्चा शुमार नहीं होगा, और सिर्फ आका के कहने से ही मुंतफी हो जाएगा, किसी लियान की यहां जरूरत नहीं है भाई। ये माना है इल्ला अन्नहु इदा नफाहु, मगर ये कि जब आका इस बच्चे की नफी कर देगा यंतफी बिकौलिही, तो ये बच्चा मुंतफी हो जाएगा आका के कौल से ही। लेकिन ये याद रखना, आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं लियान के अंदर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि बच्चे की अगर नफी करनी है तो इब्तदाई दिनों में नफी करना पड़ेगी, और इमाम साहब के नजदीक इब्तदाई दिन वो है जिनमें बच्चे की मुबारकबादें कबूल की जाती हैं और बच्चे के लिए चीजें खरीदी जाती हैं। अगर कोई शख्स बच्चे की नफी करना चाहता है तो इस इब्तदाई दिनों में नफी करना पड़ेगी, अगर इसके अंदर वो खामोश रहा तो इसका मतलब है उसने इकरार कर लिया कि ये मेरा ही बच्चा है, ये लोगों से मुबारकबादें भी वसूल कर रहा है, बच्चे के लिए चीजें भी खरीद रहा है, मालूम हो ये एतराफ कर चुका है ये मेरा बच्चा है, तो इसके बाद अगर यह नफी करेगा फिर नफी नहीं हो सकती भाई। जबकि साहिबैन के नजदीक भी इब्तदाई दिनों में नफी जरूरी है, और साहिबैन ने इसका अंदाजा निफास की मुद्दत के साथ लगाया है कि मुद्दत निफास के अंदर अंदर अगर खावंद या आका बच्चे के नसब की नफी करना चाहता है तो नफी कर सकता है भाई। तो यहां पर भी कहा कि जब आका नफी करेगा तो आका के कौल से ही नफी हो जाएगी, लेकिन यह इब्तदाई दिनों में जरूरी है, बाद में नफी करेगा तो नफी नहीं होगी। यह माना है इल्ला अन्नहु इदा नफाहु यंतफी बिकौलिही, मगर यह कि जब आका इस बच्चे की नफी करेगा तो बच्चा मुंतफी हो जाएगा आका के कहने से ही। लिअन्न फिराशहा ज़ईफुन, इसलिए क्योंकि उम्मे वलद का फिराश ज़ईफ है, यानी मुतवस्सित दर्जे का है, ज्यादा कवी नहीं है। हत्ता यमलिकु नकलहु बित्तज़वीजी, यहां भी हत्ता के बाद यमलिकु पढ़े, मैंने आपको बतलाया कि हत्ता का मा बाद अगर माकबल की तरफ निस्बत करते हुए मुस्तकबिल हो तो फिर हत्ता के बाद अन मुकद्दर होगा और यह फिर नसब देगा, वरना नसब नहीं देगा। तो कहते हैं हत्ता यम लिकु नकलहु बि तजवीजी, यहां तक कि आका मालिक है कि इस फिराश को नकल कर दे बि तजवीजी, निकाह करवाकर। भाई उम्मे वलद जो है वो आका का फिराश बन चुकी है, लेकिन आका इस फिराश को नकल भी कर सकता है, किसी दूसरे को भी दे सकता है, यानी आका किसी दूसरे के साथ इस बांदी का निकाह करवा दे। जब आका किसी दूसरे से निकाह करवा देगा तो अब यह बांदी अपने खावंद का फिराश बन गई, अब आका के लिए इसे सोहबत जायज नहीं। तो मालूम हुआ उम्मे वलद जो फिराश मुतवस्सित है उसके अंदर आका उसके फिराश को नकल कर सकता है निकाह के जरिए, जबकि बीवी में यह मुमकिन नहीं है। खावंद अपनी बीवी का किसी और से निकाह करवाकर उसके फिराश को मुंतकिल कर दे, ऐसा नहीं कर सकता। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं हता यम लिकु नकलहु बि तजवीजी, यहां तक कि आका मालिक है कि इसके फिराश को नकल कर दे तजवीज के जरिए, यानी निकाह करवा के बिखिलाफ इल मनकूहती, बिखिलाफ मनकूहा के, यानी वो औरत जिससे खावन ने निकाह किया है। बखिल तो कहते हैं बिखिलाफ इल मनकूहती, बखिलाफ मनकूहा के, है सुला यंतफिल वलदु भी नफी ही, क्योंकि यहां पर ये जो बच्चा है ये मुंतफी नहीं होता भी नफी ही खावंद की नफी करने से, इल्ला बिल लेआनी मगर लेआन के जरिए ही, लिता अकुदिल फिराशी बवजह फिराश के पक्का हो जाने के, यहां बीवी का जो फिराश है वो पक्का है मजबूत है, लिताअक्कुदिल फिराशी फिराश के पक्का होने की वजह से, हत्ता ला यमलिकु इबतालहु बितज़वीजी, यहां तक कि खावंद मालिक नहीं है कि इस फिराश को बातिल कर दे बितज़वीजी, निकाह करवा के, यानी खावंद ऐसा नहीं कर सकता कि अपनी बीवी का किसी और से निकाह करवा दे और अपना फिराश बातिल कर दे, दूसरे को उस फिराश का मालिक बना दे, नहीं, ये फिराश बड़ा पक्का है, ये निकाह के जरिए भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता। जबकि उम्मे वलद का फिराश मुतवस्सित दर्जे का है, उसको निकाह के जरिए मुंतकिल किया जा सकता है। तो कहते हैं हत्ता ला यमलिकु इबतालहु बितज़वीजी, यहां तक के खावंद मालिक नहीं है कि वो इस फिराश को बातिल कर दे निकाह करवाकर, वहां दल्लदी जकर ना हो हुक्मुन, वहां दल्लदी जकर ना हो, और ये जो हमने जिक्र किया हुक्मुन ये हुक्म है, ये जो हमने जिक्र किया ये हुक्म है, यानी ये कजाए काजी है, ये काजी का फैसला है, काजी के पास अगर मसाला चला जाए तो फिर बांदी की औलाद आका की शुमार नहीं होगी जब तक आका ने एतराफ न किया हो, तो काजी यही फैसला करेगा। यानी अब बांदी की औलाद का नसब खुद बखुद आका से साबित नहीं होगा, यह हमने हुक्म बतलाया है शरीयत का, यानी काजी यह फैसला करेगा। बाकी दियानतन यानी उस अल्लाह उस बंदे का मामला है, अगर ये आका इस बांदी से सोहबत करता था और वो इसकी हिफाजत करता था बीवियों की तरह, जैसे बीवियों को गैर से बचा कर रखा जाता है, इसी तरह ये इस बांदी को भी बीवियों की तरह उसकी हिफाजत करता था और इसे वती करता था और नीज इससे सोहबत करते हुए अज़ल भी नहीं करता था। अज़ल कहते हैं कि बीवी के साथ सोहबत की जाए और जब इखराज मनी का वक्त आए तो उस वक्त इखराज मनी खारिज में कर दे ताकि हमल न ठहरे। तो अगर आका इस बांदी के साथ सोहबत भी करता था और बीवियों की तरह इसको हिफाजत से भी रखता था कि जिना वगैरह से इसको बचा कर रखे, और आका इससे सोहबत के वक्त अजल भी नहीं करता था, तो दयानतन आका पर लाजिम है कि वो नसब का एतराफ करे। इस जैसी बांदी से बच्चा हो जाए तो आका पर दयानतन लाजिम है, यानी ये उसका और अल्लाह का मामला है, इसको दावा करना चाहिए भाई, ध्यानतन इस पर लाजिम है भाई। तो कहते हैं वहाद अल्लदी ज़करना हु हुक्मन, और ये जो हमने जिक्र किया ये हुक्म है, फअम्मत दियानतु, तो बाकी दियानतन जो है यानी अल्लाह उस बंदे का मामला जो है, फइनकाना वती आहा, तो अगर आका इस बांदी से वती करता था, वहस्सनाहा, और इसकी हिफाजत करता था, हस्सना स्वाद के साथ भाई, हस्सना युहस्सिनु तहसीन का माना है हिफाजत करना, जैसे बीवी की इंसान हिफाजत करता है भाई। तो कहते हैं फईन का न वती आहा, अगर आका इस बांदी से वती करता था, वह हसनहा, और इसकी हिफाजत करता था, वलम या अजिल अनहा, और इससे अजल भी नहीं करता था, यानी खारिज में मनी का इखराज नहीं करता था तो यलजमुहु अन यातरिफ बिही व यदअिया, तो लाजिम है इस आका पर कि वो नसब का एतराफ करे, व यदअिया और इसका दावा करे, लिअन्न ज़ाहिरा अन्नल वलदा मिनहु, इसलिए क्योंकि जाहिर यही है कि यह बच्चा आका से ही है, व इन अज़ला अनहा, और अगर आका इस बांदी से अजल करता था, अवलम युहस्सिनहा, या आका इसकी हिफाजत नहीं करता था, यानी काम काज के लिए बाहर भेज रहा है, हर तरफ भेज रहा है, अब बीवी की तरह इसकी हिफाजत नहीं करता था, तो जाज लहू अन फियाहू, तो अब आका के लिए जायज है वो नसब की नफी कर सकता है। لِأَنَّهَا ظَاهِرًا, इसलिए क्योंकि ये जो जाहिर है, يُقَابِلُهُ ظَاهِرٌ آخَرُ, उसके मुकाबले में एक और जाहिर है। भाई पहले बताया, अगर आका बांदी से सोहबत भी करता है और उसकी हिफाजत भी करता है और अजल भी नहीं करता तो उसको एतराफ करना चाहिए, क्योंकि जाहिर यही है, इन सब चीजों से जाहिर यही है कि ये इसी की औलाद है, तो आका को एतराफ करना चाहिए भाई, दयानतन उस पर लाजिम है भाई। और अगर आका उस बांदी की हिफाजत नहीं करता था या उससे अजल करता था तो फिर आका उस बच्चे के नसब की नफी कर सकता है, यानी दयानतन, दयानतन वो बच्चे के नसब की नफी कर सकता है, इसलिए क्योंकि यहां पर ये जाहिर जो है, कौन सा जाहिर, कि ये इसकी बांदी का बच्चा है, लिहाजा इसी का होना चाहिए। इस जाहिर के मुकाबले में एक और जाहिर आ गया, और वो क्या जाहिर है, कि आका इसे अजल करता है और आका इसकी हिफाजत नहीं करता, तो एक जाहिर के मुकाबले में दूसरा जाहिर आ गया। एक जाहिर क्या, कि ये बच्चा आका का होना चाहिए क्योंकि ये इसी की बांदी है और इसी की ममलूक है, और आका इसे वती तो करता है, बहरहाल चाहे अजल करता है लेकिन वती तो करता है, तो ये एक जाहिर है। लेकिन इसके मुकाबले में एक दूसरा जाहिर है कि आका बेशक वती करता है लेकिन अजल करता है, और आका इसकी हिफाजत नहीं करता बीवी की तरह, बाहर कामकाज के लिए भी इसको भेजता रहता है, तो लिहाजा ये जाहिर उस पहले जाहिर के मुकाबले है। एक जाहिर क्या तकाजा कर रहा है, यह बच्चा आका से ही होना चाहिए, और दूसरा जाहिर कि आका तो अजल करता है और इसकी हिफाजत नहीं करता, तो यह उस पहले जाहिर के मुकाबले में आ गया, तो लिहाजा यहां पर आका के लिए नसब की नफी जायज है दयानतन भाई, यह माना है। तो वह इन अजल अनहा अवलम युहस्सिनहा, और अगर आका इस बांदी से अजल करता है या इसकी हिफाजत नहीं करता, जाज लहु अन यनफियहु, तो आका के लिए जायज है कि वो इस बच्चे की नफी कर दे, लिअन्नहा ज़ाहिरा, इसलिए क्योंकि ये जो जाहिर है कि इसकी बांदी का बच्चा है लिहाजा आका से ही होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो जाहिर है, युकाबिलुहु ज़ाहिरुन आखरु, इसके मुकाबिल एक और जाहिर भी है, तो ये बच्चा आका का है या नहीं इसमें शक आ गया, जब शक आ गया तो आका के लिए नफी जायज है भाई। तो कहते हैं हा कदा रुविया अन अबी हनीफा रहमतुल्लाह, इसी तरह रिवायत किया गया है इमाम साहिब से, इमाम साहिब से इसी तरह रिवायत किया गया है, यानी पहली सूरत के अंदर आका को दयानतन एतराफ करना चाहिए और दूसरी सूरत में आका पर एतराफ लाजिम नहीं, वो नफी कर सकता है। तो कहते हैं हा कदा रुविया अन अबी हनीफा रहमतुल्लाह, इसी तरह रिवायत किया गया है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से, वफीही रिवायतानि उखरायानि अन अबी यूसुफ व अन मुहम्मदिन रहिमहुमल्लाह, और इसके अंदर दो और रिवायतें भी हैं, एक इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से है और एक इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह से है, इसमें दो और रिवायतें भी हैं भाई। ज़करना हुमा फी किफायतिल मुंतही, उन दोनों रिवायतों को हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र किया है, उन दोनों को हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र किया है भाई। हाशिए में वो दो रिवायतें भी दी हुई हैं भाई, वो दो रिवायतें ये हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह रिवायत फरमाते हैं कि जब आका बांदी से वती करता है और आका ने इस्तिबरा नहीं करवाया, मैंने बतलाया था इस्तिबरा का माना है रहम की सफाई तलब करना, यानी एक हैज इंतजार करना ताकि पता चल जाए कि बांदी हामिला नहीं है, जब सोहबत के बाद बांदी को हैज आ गया मालूम हुआ कि बांदी हामिला नहीं, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आका बांदी से वती करता है और आका ने बांदी से इस्तिबरा नहीं करवाया, यानी एक हैज इंतजार किया कि कहीं ये हामिला तो नहीं, तो अगर इस्तेबरा नहीं करवाया तो इस सूरत में फिर आका को दावा करना चाहिए और एतराफ करना चाहिए कि बच्चा मेरा है, क्योंकि आका ने इस्तेबरा नहीं करवाया। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह रिवायत फरमाते हैं कि अगर आका बांदी से वती करता है और फिर आका ने इस्तेबरा नहीं करवाया है तो इस सूरत में बांदी ने बच्चे को जन्म दिया तो आका पर उसका एतराफ लाजिम है, चाहे आका अजल करता हो या अजल न करता हो, चाहे उसकी हिफाजत करता हो या हिफाजत न करता हो। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह रिवायत फरमाते हैं कि अगर आका को यह यकीन नहीं है कि यह बच्चा मुझसे है तो फिर इस सूरत के अंदर आका इस बच्चे को आजाद कर दे। आका क्या करे, बच्चे को आजाद करे, बांदी से नफा उठाता रहे लेकिन बच्चे को आजाद कर दे, क्योंकि इहतमाल है हो सकता है यह बच्चा इसी आका से हो, तो इस बच्चे को ममलूक बनाकर ना रखे भाई। बात समझ में आ गई। तो यह माना है वफी ही रिवायतानी उखरयानी अन अबी यूसुफ व अन मोहम्मदिन रहिमहुमल्लाहु ताला। और इसके अंदर दो और रिवायतें भी हैं इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहिमहुमल्लाह से, जकर ना हुमा फी किफायतिल मुंतही, इन दोनों रिवायतों को हमने जिक्र किया है किफायतुल मुंतही में। आगे देखिए वह इन जवजा फजा अदबी वलदिन फहिया फी हुक्म उम्मी ही। भाई याद रखो ये जो बच्चा है ये मां के ताबिया होता है, अगर मां आजाद तो बच्चा भी आजाद, और अगर मां बांदी है तो बच्चा भी ममलूक होगा, गुलाम या बांदी होगा। तो ये जो उम्मे वलद है इसका जो बच्चा है, याद रखो उम्मे वलद का जो बच्चा है वो भी उम्मे वलद के हुक्म में है, ये भी उम्मे वलद के हुक्म में है। भाई सूरत ये आका की एक उम्मे वलद है, तो इस उम्मे वलद से जो बच्चा हुआ था आका ने कहा था ये मेरा बच्चा है, तो वो बच्चा तो आजाद है, लेकिन आका ने फिर इस उम्मे वलद का किसी दूसरे से निकाह करवा दिया और उस खावन से इस बांदी की औलाद हुई इस उम्मे वलद की। तो आपने पढ़ा है कि ये बच्चा मां के हुक्म में है, ये मां आका की ममलूक है, तो बच्चा भी आका का ममलूक है, अगरचे इस बच्चे का नसब साबित है क्योंकि निकाह से यह बच्चा पैदा हुआ है, ये उस खावन का बच्चा है लेकिन इस आका का ममलूक है। तो ये जो बच्चा है ये उम्मे वलद के हुक्म में है, यानी जैसे उम्मे वलद आका के मरने पर आजाद होगी, इसी तरह ये बच्चा जो आका का ममलूक है ये भी इस आका के मरने पर आजाद हो जाएगा। और जैसे उम्मे वलद सारे माल में से आजाद होती है और उस पर सई नहीं होती, इसी तरह यह बच्चा भी सारे माल में से आजाद होगा और इस पर कोई सई वगैरह नहीं होगी। तो कहते हैं वह इन जव वजहा, और अगर आका ने उम्मे वलद का निकाह करवा दिया, फजा अत भी वलदिन, तो फिर ये एक बच्चे को ले आई, यानी इसने एक बच्चे को जन्म दिया, फह वफी हुक्म उम्मी ही, तो यह बच्चा भी अपनी मां के हुक्म में है, यानी दोनों आजाद होंगे और सारे माल में से आजाद होंगे। लिअन्ना हक्कल हुर्रियति यसरी इलल वलदी, इसलिए क्योंकि आजादी का हक जो है वो सिरायत कर जाएगा बच्चे तक, का तदबीरी, जैसे कि तदबीर है, अगर मां मुदब्बरा हो तो उसकी औलाद भी मुदब्बर ही होती है। तो कहते हैं कद तदबीरी, जैसे कि तदबीर है, अला तारा क्या आप देखते नहीं, अन्न वलदल हुर्रत हुर्रुन, के आजाद औरत का बच्चा आजाद होता है, वलदुल किन्नति रकीकुन, और बांदी का जो बच्चा होता है रकीकुन वो गुलाम होता है, वन नसबु यसबुतु मिनज ज़ौजी, और ये जो बच्चा है इसका नसब खावन से साबित हो जाएगा, लिअन्नल फिराश लहू, इसलिए क्योंकि ये फिराश इसी का है, ये बांदी इसकी मनकूहा है, तो बच्चे का नसब खावन से साबित हो जाएगा। तो कहते हैं लिअन्नल फिराश लहू, इसलिए क्योंकि ये फिराश उसी खावंद का है, व इन कानन निकाहू फासिदन, अगरचे निकाह फासिद हो, चाहे आका ने निकाह फासिद ही करवाया हो, आप पढ़ चुके हैं निकाह फासिद और निकाह बातिल एक ही चीज है, और निकाह फासिद यह है मसलन गवाहों के बगैर निकाह कर लिया या इद्दत के अंदर एक औरत से निकाह कर लिया, तो यह सब क्या है निकाह फासिद। और आपको मैंने बतलाया था निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं, यह लग्व है बातिल है, इसका कोई एतबार ही नहीं है। हां अलबत्ता निकाह फासिद में जब वती कर लेगा तो अब निकाह के अहकाम साबित हो जाएंगे, इस वती की वजह से आप इस शख्स पर महर भी लाजिम हो जाएगा, और इस वती से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका नसब भी इस आदमी से साबित हो जाएगा, यानी उस बच्चे को वलदुज़ जिना नहीं समझा जाएगा बल्कि वो इस शख्स का बच्चा शुमार होगा। और नीस वती की वजह से अब जब आपस में एक दूसरे को छोड़ेंगे तो फिर औरत पर इद्दत भी वाजिब होगी। तो निकाह फासिद का कोई हुक्म नहीं होता मगर जब वती कर ली जाए तो फिर निकाह के अहकाम आ जाते हैं। तो कहते हैं कि ये बच्चे का नसब साबित हो जाएगा खावंद से, लिअन अल फिराश लहू, इसलिए क्योंकि ये बांदी उस खावंद का फिराश है। वह इन कानन निकाह फासिदन, अगरचे निकाह फासिद हो, इजिल फासिदु मुल्हकुम बिसहीही, इसलिए क्योंकि निकाह फासिद को भी मिलाया गया है सही निकाह के साथ, फी हकिल अहकामी, अहकाम के हक में। जैसे सही निकाह से नसब साबित होता है, महर वाजिब होता है और औरत पर जुदाई में इद्दत वाजिब होती है, तो निकाह फासिद में भी इसी तरह होगा। यह माना है इदिल फासिद मुल्हकुम बिसहीही फी हकिल अहकामी, इसलिए क्योंकि निकाह फासिद को मिलाया गया है निकाह सही के साथ अहकाम के हक में। वलवी दआहुल मौला, और अगर उस बच्चे का दावा आका ने कर दिया, आका की उम्मे वलद है और आका ने इस उम्मे वलद का किसी दूसरे से निकाह कर दिया जी। अब उस खावंद से बांदी ने एक और बच्चे को जन्म दिया तो इस सूरत में यह बच्चा खावंद का शुमार होगा क्योंकि यह बांदी खावंद का फिराश है। लेकिन आका ने दावा कर दिया यह मेरा बच्चा है, तो फिर इस सूरत में याद रखो नसब तो साबित नहीं होगा क्योंकि बच्चा पहले ही साबित नसब है। हां, ये बच्चा आका का ममलूक था जी। क्योंकि ये बांदी आका की है तो ये बच्चा भी आका का है, तो जब आका ने कहा कि ये बच्चा मेरा है तो नसब तो साबित नहीं होगा लेकिन बच्चा आजाद हो जाएगा जी। बच्चा आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वलवी दआहुल मौला, और अगर आका ने उस बच्चे का दावा कर दिया, ला यसबुतु नसबुहु मिनहु, तो उस बच्चे का नसब आका से साबित नहीं होगा, लिअन्नहु साबितुन नसबी मिन गैरिही, इसलिए क्योंकि वो बच्चा साबितुन नसब है आका के अलावा से यानी खावंद से। वयातिकुल वलदु, और वह बच्चा आजाद हो जाएगा क्योंकि आका का क्या ख्याल है ये मेरा बच्चा है, लिहाजा उसके इकरार पर उसका मुआखजा होगा भाई और यह बच्चा आजाद हो जाएगा। तो कहते हैं वयाति कुल वलदु, और वो बच्चा आजाद हो जाएगा। मुतसीर उम्मुहु उम्म वलदिन लहु लि इकरारिही, और ये बांदी जो है आका की उम्मे वलद हो जाएगी लि इकरारिही, आका के इकरार करने की वजह से ये बांदी आका की उम्मे वलद बन जाएगी आका के इकरार करने की वजह से। तो इश्काल होता है कि उम्मे वलद ही की तो बात चल रही है, ये तो पहले से ही आका की उम्मे वलद थी जी। इसने पहले एक बच्चे को जन्म दिया था और आका ने कहा था ये मेरा बच्चा है, तो ये तो पहले ही उम्मे वलद थी, फिर आका ने इसका किसी से निकाह करवाया था जी। फिर आका ने इसका किसी से निकाह करवाया था, तो ये कहना कि आका ने जब खावंद के बच्चे का इकरार किया जी। तो बच्चा तो आजाद हो जाएगा जी। और यह बांदी तो पहले ही आका की उम्मे वलद है, फिर क्या माना कि यह बांदी इस इकरार की वजह से आका की उम्मे वलद बन जाएगी। तवज्जो है, एतराज समझ में आ रहा है। तो फिर शारहीन जवाब देते हैं कि वलविद दआहुल मौला, यहां अलग सूरत बना ले, आका ने अपनी उम्मे वलद का निकाह नहीं करवाया बल्कि आम बांदी थी आका की, उसे आका की कोई औलाद नहीं है, और इस बांदी का आका ने किसी से निकाह करवा दिया। अब यह आम बांदी है, आका की उम्मे वलद नहीं है, इस बांदी का आका ने किसी से निकाह करवा दिया और खावन से बांदी ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो यह बच्चा खुद बखुद उस खावन का शुमार होगा क्योंकि यह बांदी उसकी मनकोहा है, उसका फिराश है। तो और फिर आका ने कह दिया यह बच्चा मेरा है, तो नसब तो साबित नहीं होगा, अलबत्ता बच्चा आजाद हो जाएगा, और नसब तो साबित नहीं होगा लेकिन यह बांदी अब आका की उम्मे वलद बन जाएगी क्योंकि आका का यह गुमान है कि यह मेरे बच्चे की मां है। तो ये सूरत बना ले, बात समझ में आ गई। यहां जो आका दावा कर रहा है वो अपनी उम्मे वलद के बच्चे का दावा नहीं कर रहा बल्कि अपनी आम बांदी के बच्चे का दावा कर रहा है, सूरत समझ में आ गई। तो फिर इस सूरत में ये बात ठीक हो जाती है, वह तसीर उम्मुहु उम्म वलदिन लहू लि इकरारिही, और ये बच्चे की जो मां है ये आका की उम्मे वलद बन जाएगी लि इकरारिही, आका के इकरार की वजह से, नसब तो साबित नहीं लेकिन बच्चा भी आजाद और बांदी भी उम्मे वलद बन गई। आगे देखिए भाई, वह इरा मातल मौला अतकत मिन जमी अलमाल, और जब आका मर जाए तो उम्मे वलद आजाद हो जाती है सारे माल से, यानी सुलुस में से नहीं आजाद होगी मुदब्बर की तरह बल्कि सारे माल में से आजाद हो जाएगी। यानी अगर आका का सारा माल यही उम्मे वलद है और कोई माल ही नहीं है फिर भी ये आजाद हो जाएगी। तो कहते हैं वह इदा मातल मौला आताकत मिन जमी अल माली, और जब आका मर जाए तो ये उम्मे वलद आजाद हो जाएगी सारे माल से। लिहदीस सईद इबन मुसैयबी रहिमहुल्ला, हज़रत सईद इबन मुसैयब रहिमहुल्ला की हदीस की वजह से। हज़रत सईद इबन मुसैयब, याद रखो ये जलीलुल कदर ताबई गुजरे हैं भाई, हज़रत सईद इबन मुसैयब भी और इसी तरह सईद इबन जुबैर भी, ये दोनों जलीलुल कदर ताबई हैं भाई। तो कहते हैं हज़रत सईद इबन मुसैयब रहिमहुल्ला की हदीस की वजह से कि अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अमरा बिइत्क उम्महातिल औलादी, कि हुजूर अलैहि सलाम ने उम्महात औलाद की आजादी का फैसला फरमाया। अमारा, अमर का यहां माना हुक्म देना नहीं, यानी यह माना नहीं है कि हुजूर ने हुक्म दिया कि उम्महात औलाद को आजाद करो, बल्कि हुजूर ने फैसला फरमाया यानी शरई हुक्म बतलाया सबको कि उम्महात औलाद आजाद हो जाती हैं आका के मरने के बाद। यह माना है कि हज़रत सईद इब्न मुसैयब रहिमहुल्लाह की हदीस की वजह से कि अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अमरा बिइत्क उम्महातिल औलादी, कि हुजूर अलैहि सलाम ने फैसला फरमाया उम्महात औलाद की आजादी का। व अल्ला युबान फी दैनिन, और यह कि उम्महात औलाद को दैन के अंदर न बेचा जाए। वला युजअलन मिनस सुलुसी, और यह कि उम्महात औलाद को सुलुस में से करार न दिया जाए। यहां तक है हदीस भाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्महात औलाद की आजादी का भी फैसला फरमाया और यह कि इनको देन के अंदर भी नहीं बेचा जा सकता और इनको सुलुस में से भी करार नहीं दिया जा सकता। वली अन अल हाजत इलल वलद असलियतुन, यहां से अकली दलील जिक्र कर रहे हैं साहिबे हिदाया, पहली नकली दलील थी यानी हदीस और दूसरी अब अकली दलील है। कहते हैं वली अन अल हाजत इलल वलद असलियतुन, इसलिए क्योंकि औलाद की जो हाजत है असलियतुन वो असली है। याद रखो इंसान की हाजात दो किस्म की हैं, कुछ हाजात असलिया हैं और कुछ हाजात जाइदा हैं। हाजात असलिया वो हैं कि उनके बगैर चारा ही नहीं, उनके बगैर गुजारा ही नहीं, जैसे हर इंसान खाने पीने का मोहताज है तो यह इसकी हाजात असलिया में से है। इसी तरह हर इंसान कपड़े पहन का मोहताज है तो ये कपड़े इसकी हाजाते असलिया में से हैं, जबकि इसके मुकाबले में कुछ हाजाते जायदा हैं, जायद हाजतें यानी इंसान तमाम चीजों में सहूलत चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए आसानी होती चली जाए, तो जितनी सहूलत वाली चीजें हैं वो जमा करता चला जाता है। तो ये सारी क्या है, हाजाते जायदा हैं, हाजाते असलिया में दाखिल नहीं है। बात समझ में आ गई। एक है इबकाए नफ्स की हाजत और एक है इबकाए नस्ल की हाजत। इबकाए नफ्स ये भी हाजत असली है, इबकाए नफ्स यानी अपनी जात को बाकी रखना, हर इंसान अपनी जात को बाकी रखने के लिए खाने पीने का मोहताज है, तो ये क्या है इबकाए नफ्स, ये इसकी हाजत असलिया है। और इसी तरह हर इंसान चाहता है कि उसकी नस्ल बाकी रहे, उसकी औलाद का सिलसिला जारी रहे, तो ये इबकाए नस्ल है। और याद रखो इबकाए नस्ल भी हाजात असलिया में से है, ये इंसान की हाजात असलिया में से है। तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं वली अन अल हाजत इलल वलद असलियतुन, और इसलिए क्योंकि औलाद की जो हाजत है वो हाजत असली है। फतुकद्दमु अला हक्किल वरसति वद्दैनी, लिहाजा इसको मुकद्दम किया जाएगा वारिसों के हक पर, वद्दैनी और देन पर, कत तकफीनी, जैसे कि कफन दफन है। भाई देखिए जब किसी शख्स का इंतकाल होता है तो सबसे पहले वो कफन दफन का मोहताज है, वो मरने वाला, तो ये उसकी हाजत असलिया है और हाजत असलिया को सब चीजों पर मुकद्दम किया जाता है, इसीलिए कफन दफन सब पर मुकद्दम है। उसके बाद मरने वाले के दुयून बाद में अदा किए जाएंगे और वसीयत और वारिसों को माल भी उसके बाद दिया जाएगा, तो हाजत असली बाकी तमाम चीजों पर मुकद्दम होती है, यहां तक के वारिसों के हक पर भी मुकद्दम होती है और देन पर भी मुकद्दम होती है। तो यहां पर भी ये जो उम्मे वलद है ये सारे माल में से आजाद हो जाएगी, इसके अंदर वारिसों का हक भी नहीं है और इसके अंदर कर्जखाहों का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि ये इंसान की हाजात असलिया में से है। इस बांदी से उसको औलाद हासिल हो रही थी तो ये इसकी हाजात असलिया में से है। जब ये हाजात असलिया में से है तो ये कफन दफन की तरह मुकद्दम होगी, यानी इसमें वारिसों का हक भी नहीं होगा और कर्जखाहों का भी इसमें हक नहीं होगा, तो ये सारे माल में से आजाद होगी। भाई ये माना है वली अन अल हाजत इलल वलदी असलियतुन, और इसलिए क्योंकि औलाद की जो हाजत है वो असली है। व तुकद्दमु अला हकिल वरसती व दैनिक तकफीनी, तो लिहाजा ये मुकद्दम होगी वारिसों के हक पर भी और दैन पर भी। कत तकफीनी, जैसे कि कफन दफन है। बिखिलाफ इद्दबीर, बखिलाफ मुदब्बर बनाना। लिअन्नहु वसीयतुन, क्योंकि वो तो वसीयत है। बीमा हुआ मिन ज़वाइदिल हवाइजी, बीमा हुआ मिन ज़वाइदिल हवाइजी, ये इजाफत हो रही है सिफत की मौसूफ की तरफ। हवाइजे ज़ाइदा बई, हवाइज यानी हाजतें, ऐसी हाजतें ज़वाइद जो ज़ाइद हैं बई, तो ये ज़वाइद सिफत है हवाइज की और इसको फिर मौसूफ पर मुकदम करके उसकी तरफ इजाफत कर दी गई। भाई तो कहते हैं लिअन्नहु वसीयतुन, क्योंकि तदबीर जो है वो तो वसीयत है। बिमा हुआ मिन ज़वाइदिल हवाइजी, उस चीज की जो कि जायद हाजतों में से हो। वसीयत ये जायद हाजतों में से है, क्योंकि इसमें गैर को माल दिया जा रहा है, ये उस मैयत की असल हाजतों में से नहीं है। लिहाजा तदबीर जो है वो दैन से मुअख्खर होगी भाई, क्योंकि वो हाजाते जायदा में से है। ये माना है लिअन्नहु वसीयतुम बिमा हुआ मिन ज़वाइदिल हवाइजी, इसलिए क्योंकि ये वसीयत है उस चीज की जो कि जायद हाजतों में से है। आगे देखिए वला सियायत अलैहा फी दैनिल मौला लिल गुरमाई, और इस उम्मे वलद पर सई भी नहीं है। फी दैनिल मौला लिल गुरमाई, जो आका का दैन है कर्जखाहों के लिए। अगर आका पर कोई दैन था तो उस दैन के अंदर भी उम्मे वलद के जिम्मे कोई सई नहीं है भाई। तो कहते हैं वला सियायत अलैहा फी दैनिल मौला लिल गुरमाई, और इस उम्मे वलद पर सई भी नहीं है कर्जखाहों के लिए आका के दैन में। लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी। वो जो सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह ने हदीस रिवायत की कि हुजूर अलैहि सलाम ने उम्महात औलाद की आजादी का फैसला फरमाया, और यह कि उनको बेचा ना जाए और ना उनको सुलुस में से करार दिया जाए। तो उस हदीस के अंदर आया कि उम्मे वलद को बेचा भी नहीं जा सकता। मालूम हुआ ये माले मुतकविम नहीं है। जब ये माले मुतकविम नहीं है तो इसके अंदर कर्जखाहों का भी कोई हक नहीं है भाई। तो कहते हैं लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी। वली अन्नहा लैसत बिमालिन मुतकविमिन, मेरी किताब में है मुतकवम बई, वौ के ऊपर शद के साथ साथ जबर भी है, यह दुरुस्त नहीं है भाई। यह लफ्ज मुतकविम है भाई, माले मुतकविम। तो कहते हैं वली अन्नहा लैसत बिमालिन मुतकविमिन, और इस वजह से कि उम्मे वलद जो है वह माले मुतकविम नहीं है, यानी ऐसा माल जिसकी कीमत हो, वो उम्मे वलद ऐसा माल नहीं है। हत्ता ला तुज़मनु बिल ग़स्बी, हत्ता ला तुज़माना, मेरी किताब में नून पर जबर है भाई, लेकिन यह दुरुस्त नहीं। यहां पर भी ला तुज़मनु पढ़ेंगे, क्योंकि हत्ता का माबाद माकबल की तरफ निस्बत करते हुए मुस्तकबिल नहीं है भाई। हत्ता ला तुज़मनु बिल ग़स्ब इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, यहां तक कि ये उम्मे वलद जो है वो मजमून नहीं होगी ग़स्ब की वजह से इमाम साहेब के नजदीक। भाई सूरत ये, एक शख्स ने किसी दूसरे की उम्मे वलद को गसब कर लिया और ये उम्मे वलद उसी गासिब के पास हलाक हो गई, और आपने पढ़ा है इस सूरत में गासिब पर जमान आया करता है जब वो गसब शुदा चीज उसी के पास हलाक हो जाए। लेकिन उम्मे वलद तो गैर मुतकविम है, लिहाजा गासिब के पास अगर उम्मे वलद हलाक भी हो जाए तो गासिब पर कोई जमान नहीं आएगा। यह माना है कि वली अन्नहा लैसत बिमालिन मुतकविमिन, इसलिए क्योंकि उम्मे वलद जो है वो कीमत वाला माल नहीं है। हत्ता ला तुज़मनु बिल ग़स्बि इंदा अबी हनीफा रहमतुल्लाह, यहां तक कि यह बांदी जो है इसका जमान भी नहीं लिया जाएगा गसब की वजह से इमाम साहेब के नजदीक। फला यतअल्लक़ु बिहा हक़ुल ग़ुरमाई, लिहाजा इस उम्मे वलद के साथ कर्ज़खाहों का हक भी मुतअल्लिक़ नहीं होगा, क्योंकि ये माल मुतकविम नहीं है भाई। अगर कोई कीमत वाली चीज होती तो उससे कर्जखाहों का हक मुतालिक होता कि उसके जरिए कर्जखाहों का कर्ज अदा किया जाए, लेकिन यह तो माल मुतकविम ही नहीं है। तो कहते हैं फला यताअल्लक बिहा हकुल गुरमाई, लिहाजा इस उम्मे वलद के साथ कर्जखाहों का हक भी मुतालिक नहीं होगा। कल किसासी, जैसे कि किसास है, किसास भी हक है लेकिन किसास माल मुतकविम नहीं है, लिहाजा किसास के साथ भी कर्जखाहों का हक मुतालिक नहीं होगा। सूरत यह, एक आदमी है उस पर बहुत सारे कर्जे हैं और इसी आदमी ने किसी शख्स से किसास लेना है, उस कातिल ने इस आदमी के बेटे या बाप को कत्ल कर दिया, तो ये जो मकरूज आदमी है इसने उस कातिल से किसास लेना है, और किसास कोई माल मुतकविम नहीं है, वो इसका हक है लेकिन माल नहीं। हां अलबत्ता कभी कभार किसास में सुलह कर ली जाती है और किसास को छोड़कर माल ले लिया जाता है, तवज्जो है। लिहाजा आप ये शख्स जो मकरूज है जिसने किसी दूसरे से किसास भी वसूल करना है, इस मकरूज का इंतकाल हो गया। जब इस मकरूज का इंतकाल हो गया तो अब वो कर्जखा आ गए और कातिल के पास पहुंच गए कि भाई वो जो मकरूज था जिसने हमारे पैसे देने थे उसका हक था आप पर, आपसे उसने किसास लेना था, अब हमें उसके बदले में माल दो, हमें माल दो, क्योंकि मरने वाला हमारा मकरूज था और उसका तुम्हारे ऊपर हक था तो अब तुम अदायगी करो। कहते नहीं, किसास हक तो था उस मरने वाले का लेकिन वो माल मुतकविम नहीं है, लिहाजा कातिल से वो कर्ज खा माल का मुतालबा नहीं कर सकते। तो यहां पर भी इसी तरह है, ये जो उम्मे वलद है ये भी गैर मुतकविम है, लिहाजा इससे भी कर्ज खा अपने हक का मुतालबा नहीं कर सकते, इससे सही नहीं करवाई जा सकती। तो यह माना है फला यताअल्लक बिहा हकुल गुरमाई, तो उम्मे वलद के साथ कर्जखाहों के हक का ताल्लुक नहीं होगा। कल किसासी, जैसे कि किसास है, बिखिलाफ इन मुदब्बरी, बखिलाफ मुदब्बर के, लिअन्नहु मालुम मुतकविमुन, क्योंकि वो माल मुतकविम है बिल इत्तेफाक भाई, लिहाजा उससे कर्जखा देन का मुतालबा कर सकते हैं और फिर वो सही करके वो कर्ज अदा करेगा भाई। आगे देखिए, व इदा असलमत उम्मु वलदिन नसरानी ये फालेहा अंता साफी कीमतिहा। भाई ये मसला पहले भी गुजर चुका है, सूरत मसला ये, एक ईसाई है और उसकी बांदी है, इस बांदी को उस ईसाई ने उम्मे वलद बना दिया, तो अब ये ईसाई की उम्मे वलद है, फिर ये उम्मे वलद मुसलमान हो गई और कोई मुसलमान बांदी किसी काफिर के तख्त नहीं रह सकती। तो लिहाजा फुकहा फरमाते हैं कि ये जो उम्मे वलद है अब ये सही करेगी और अपनी कीमत लाकर अपने ईसाई आका को अदा करेगी और फिर आजाद हो जाएगी, क्योंकि ये उम्मे वलद मुसलमान हो चुकी है, अब ये काफिर के तख्त नहीं रह सकती भाई। तो कहते हैं वईदा असलमत उम्मु वलदिन नसरानी ये, और जब ईसाई की उम्मे वलद मुसलमान हो गई, फालेहा अंता साफी कीमतिहा, तो उस पर वाजिब है कि वो सही करेगी अपनी कीमत में। और आप पढ़ चुके हैं उम्मे वलद की कीमत आम बांदी की कीमत का तीसरा हिस्सा होती है, अगर इस बांदी की कीमत 300 दिरहम थी तो उम्मे वलद होने के बाद अब इसकी कीमत सिर्फ 100 दिरहम है, तो ये अपने 100 दिरहम जो कीमत है वो लाकर उस ईसाई आका को देगी और आजाद हो जाएगी। तो कहते हैं फालेहा अंता साफी कीमतिहा, तो इस उम्मे वलद पर वाजिब है कि ये सही करेगी अपनी कीमत में। वही अभी मंजिलतिल मुकातबती, और ये उम्मे वलद जो है मुकातबा के दर्जे में है। ला तातिकु हत्ता तू अदिया सियायता, ये आजाद नहीं होगी यहां तक कि ये सही अदा कर दे, यानी वो कमाई लाकर हवाले कर दे, फिर आजाद होगी। वकाल जुफर रहमहुल्लाह, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं तातिकु फिल हाली, कि ये फिल हाल ही आजाद हो जाएगी। वसिहायतु दैनुन अलैहा, और सही जो है वो इस पर दैन होगा। हमारे नजदीक तो ये बांदी जो है ये ईसाई की जो उम्मे वलद है जो मुसलमान हो गई है ये मुकातबा के दर्जे में हो गई है, अभी आजाद नहीं, ये पैसे कमा कर लाएगी और जब अदायगी कर देगी फिर आजाद होगी। जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं नहीं, ये फिलहाल ही आजाद हो गई, अलबत्ता अब इसकी कीमत इसके ऊपर देन है और ये कमाई करेगी और लाकर वो देन अदा करेगी। तो कहते हैं वकाला जुफरू रहमहुल्ला, और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं तातिकु फिल हाल ही, कि ये उम्मे बलद फिल हाल ही आजाद हो जाएगी। वस्सियातु दैनुन अलैहा, और ये सही अब इसके ऊपर दैन है। वहादल खिलाफ फीमा इदा उरिजा अलल मौला इस्लाम फअबा, साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि ये जो इमाम जुफर का हमारे अइम्मा से इख्तिलाफ है वो उस वक्त है जब आका पर भी इस्लाम को पेश किया गया और उसने इनकार कर दिया। भाई याद रखो, उम्मे वलद मुसलमान हो गई है तो आका पर इस्लाम को पेश किया जाएगा, अगर आका भी मुसलमान हो जाता है तो ये उसी की उम्मे वलद रहेगी, लेकिन अगर आका इस्लाम लाने से इनकार कर देता है तो फिर इस सूरत के अंदर हमारा और इमाम जुफर का इख्तिलाफ है। इमाम जुफर के नजदीक ये बांदी फौरन आजाद हो जाएगी, अलबत्ता अब इसके ऊपर दैन है, सही करेगी और वो दैन अदा करेगी, जबकि हमारे नजदीक ये अभी बांदी ही है और ये मुकातबा के दर्जे में है, ये जब पूरी अदायगी कर देगी फिर आजाद होगी। तो कहते हैं वहाद अल खिलाफ फीमा ईदा उरिजा अलल मौलल इस्लाम, और ये इख्तिलाफ उस सूरत में है जब आका पर इस्लाम को पेश किया गया। फआबा, तो आका ने इनकार कर दिया। फइन अस्लमा तबका अला हालिहा, अगर आका मुसलमान हो गया तो ये उम्मे वलद अपने हाल पर बाकी रहेगी, यानी इसी तरह उसकी उम्मे वलद रहेगी। लहू, अब दलील आ गई इमाम जुफर की। लहू, इमाम जुफर रहमला की दलील यह है कि अन्न इजालत जुल्ल अनहा बादमा अस्लमत वाजिबुन। इमाम जुफर फरमाते हैं कि मुसलमान बांदी का ईसाई के तहत रहना यह उसके लिए जिल्लत का बाइस है, लिहाजा इस बांदी को जिल्लत से निजात दिलाना वाजिब है, लिहाजा इस बांदी को या तो बेचा जाएगा या आजाद किया जाएगा, और बेचा तो नहीं जा सकता क्योंकि यह उम्मे वलद है, तो दूसरी सूरत आजादी ही रह गई, लिहाजा इसके आजाद होने का हुक्म लगाया जाएगा। तो कहते हैं लहू, इमाम जुफर रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन इजालत जुल्ल अनहा, कि उस उम्मे वलद से जिल्लत को दूर करना, बादमा असलमत, बाद इसके कि जब वो मुसलमान हो गई है, वाजिबुन, ये वाजिब है, बाद इसके कि जब ये बांदी मुसलमान हो गई है तो अब इससे जिल्लत को दूर करना ये वाजिब है। वज़ालिका बिल बैअ अव अल इताकी, और ये जो है बैअ के जरिए या इताक के जरिए होगा कि इससे जिल्लत को दूर किया जाए। वक़द तअज़्ज़र अल बैअ, और बैअ तो मुतअज़्ज़िर हो गई, मुमकिन न रही। फतअय्यन अल इताक, तो इताक मुतअय्यन हो गया। वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्न नजर मिनल जानिबैन फी जालिहा मुकातबतन, हम कहते हैं कि अगर आप उम्मे वलद की आजादी का फैसला करें तो फिर तो यह आपने दोनों की रियायत न रखी, आपने तो बांदी की रियायत रखी, वो जो ईसाई आका है उसकी आपने कोई रियायत नहीं रखी, हालांकि यहां दोनों की रियायत भी हो सकती है, वो इस तरह कि इस बांदी को मुकातबा करार दे दिया जाए कि जॉब जाकर पैसे कमाकर लाओ, आका को अदा करो, और जब तुम अदा कर दोगी तो तुम आजाद हो जाओगी, तो इसमें दोनों की रियायत हो गई, बांदी मुकातबा के दर्जे में हो गई, जब मुकातबा के दर्जे में हो गई तो आका का कब्जा इस पर से खत्म हो गया, अब आका इसे खिदमत वगैरह नहीं ले सकता, और आका की भी रियायत हो गई कि आका को उसका बदल मिल जाएगा, उसके हाथ से बांदी मुफ्त में नहीं निकलेगी बल्कि बदल के जरिए निकलेगी, तो यहां दोनों की रियायत रखी जाएगी। भाई वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्न नजर मिनल जानिबैनी, कि रियायत जो है दोनों जानिब से होगी। फी जालिहा मुकातबतन, इस बांदी को मुकातबा करार देने में। लिअन्नहु यंदफ़िउ ज़ुल्लु अन्हा, इसलिए क्योंकि बांदी से भी जिल्लत दूर हो जाएगी। लिसैरूरतिहा हुर्रतन यदन, इसलिए क्योंकि वो कब्जे के एतबार से आजाद हो गई, क्योंकि मुकातब कब्जे के एतबार से आजाद की तरह होता है, आका उसे खिदमत वगैरह नहीं ले सकता। तो कहते हैं लिअन्नहु यंदफ़िउ ज़ुल्लु अन्हा, इसलिए क्योंकि बांदी से भी जिल्लत दूर हो जाएगी। लिसैरूरतिहा हुर्रतन यदन, इस वजह से कि वो आजाद होगी कब्जे के एतबार से। वज़ररु अनि ज़िम्मी, और इसी तरह उस जिम्मी से यानी ईसाई से नुकसान भी दूर हो जाएगा। लिम्बिआसिहा अलल कस्बी, इम्बिआस का माना है यहां तैयार होना, इम्बासा यनबाइसु इम्बिआसन भाई सा के साथ है। लिम्बिआसिहा अलल कस्बी, बवजह इस बांदी के तैयार होने के अलल कस्बी कमाई पर, जिम्मी से भी नुकसान दूर हो गया क्योंकि यह बांदी कमाई पर तैयार होगी क्योंकि इस कमाई की वजह से उसको आजादी मिल रही है। तो कहते हैं वज़ररु अनि जिम्मी, और नुकसान भी दूर हो गया उस जिम्मी से, लिम्बिआसिहा अलल कस्बी, बवजह इस बांदी के तैयार होने के कमाई पर, नए लन लि शरफिल हुर्रियति, आजादी के शरफ को पाने के लिए। बांदी भी कमाई पर तैयार होगी आजादी के शरफ को पाने के लिए कि उसे आजादी का एजाज मिल जाए। फयसिलु जिम्मी यू इला बदली मिल की ही, फयसिलु वसला यसिलु के माने पहुंचना, फयसिलु जिम्मी यू इला बदली मिल की ही, तो जिम्मी जो है वो अपनी मिल्कियत के बदल को पहुंच जाएगा, यानी जिम्मी को उसकी मिल्कियत का बदल मिल जाएगा, बांदी की कीमत मिल जाएगी। तो फयसिलु जिम्मी यू इला बदली मिल्की ही, तो जिम्मी जो है अपनी मिल्कियत के बदल को पहुंच जाएगा। अम्मा लव उतिकत वही मुफलिसतुन, बाकी अगर इसको आजाद कर दिया जाए, वही मुफलिसतुन, और हाल यह है कि यह मुफलिसा है, इसके पास कोई माल नहीं। अगर इमाम जुफर रहमल्ला का कौल लिया जाए तो फिलहाल ही इस बांदी को आजाद करा देना पड़ेगा, और इस वक्त तो इसके पास माल है नहीं, तो इसको सही करके कमाई करके माल अदा करना है, तो फिर तो ये कमाई में सुस्ती करेगी क्योंकि आजादी तो इसको मिल चुकी है, आजादी तो इसको मिल चुकी है, तो ये कहेगी मुझे क्या जरूरत है मेहनत मशक्कत उठाकर पैसे लाकर आका को देने की, मैं तो पहले ही आजाद हो चुकी हूं। तो लिहाजा अगर इसी वक्त बांदी की आजादी का फैसला किया जाए तो फिर ये कमाई में सुस्ती करेगी, तो इसमें आका का नुकसान है, लिहाजा फिलहाल इसकी आजादी का फैसला न किया जाए बल्कि इसकी आजादी मशरूत होगी अदायगी के साथ, जब अदायगी कर देगी तब आजाद हो जाएगी। तो कहते हैं अम्मा लव उतिकत वही मुफलिसतुन, और बाकी अगर इसको आजाद कर दिया गया है, वही मुफलिसतुन, और हाल यह है कि यह मुफलिसा है, तो ततवा ना फिल कस्बी, तो यह सुस्ती करेगी कमाई में। वह माली यह तो उम्मिल वलदिया तकीदुहा जिम्मी यू मुतकविमतन। अच्छा भाई, यहां भी एतराज होता है इमाम साहेब पर कि ए इमाम साहेब, आपके नजदीक तो उम्मे वलद गैर मुतकविम है, लेकिन यहां इस ईसाई की उम्मे वलद के मसले में आप भी फरमाते हैं कि ये उम्मे वलद जो है ये सही करेगी और अपनी कीमत कमा कर लाकर आका को देगी। तो जब उम्मे वलद गैर मुतकविम है तो फिर उस पर सही कैसे वाजिब की जा सकती है? तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदायत, दो जवाब जिक्र करेंगे। एक जवाब ये कि भाई अगरचे हमारे नजदीक की उम्मे वलद गैर मुतकविम है, लेकिन ईसाई के नजदीक तो वो माले मुतकविम है, लिहाजा ईसाई को उसी के एतिकाद पर छोड़ दिया जाएगा, उसी के एतिकाद वाला मामला उसके साथ किया जाएगा, और उसके ख्याल में तो ये उम्मे वलद मुतकविम है, लिहाजा उम्मे वलद कमाई करके कीमत अदा करेगी और आजाद हो जाएगी। तो एक जवाब तो ये देंगे साहिब हिदाया कि उम्मे वलद गैर मुतकविम है, लेकिन ईसाई के साथ उसी के एतिकाद का मामला किया जाएगा। आगे दूसरा जवाब भी जिक्र करेंगे। कहते हैं वमाली यतु उम्मिल वलदी या तकीदुहा जिम्मी यो मुतकविमतन, और उम्मे वलद की मालियत जो है जिम्मी का एतिकाद है उसके बारे में कि वो कीमत वाली है, उम्मे वलद की मालियत कीमत वाली है, जिम्मी का यह एतिकाद है। फयुतरकु वमा यातकिदुहु, तो जिम्मी को छोड़ दिया जाएगा, वमा यातकिदुहु, और जिसका वो एतिकाद करता है, ये वो बमाने मा के है। फयुतरकु वमा यातकिदुहु, तो उस जिम्मी को उसके एतिकाद के साथ ही छोड़ दिया जाएगा, यानी उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा, उसके एतिकाद के मुताबिक उसे सुलूक किया जाएगा, और उसके ख्याल में तो उम्मे वलद मुतकविम है, तो उम्मे वलद सही करेगी उसके लिए। भाई यह माना है फयुतरकु वमा यातकिदुहु, तो उस जिम्मी को उसके एतिकाद के साथ छोड़ दिया जाएगा। वली अन्नहा, यहां से दूसरा जवाब दे रहे हैं कि यह उम्मे वलद क्यों सही करेगी। तो दूसरा जवाब यह है कि उम्मे वलद अगरचे गैर मुतकविम है, लेकिन ये हक मुहतरम तो है जी। भाई देखिए, याद रखो, आप जितनी चीजों के मालिक हैं वो सब चीजें काबिले एहतराम हैं। आप जितनी चीजों के मालिक हैं वो सब चीजें काबिल एहतराम हैं, किसी को इजाजत नहीं है आपकी कोई चीज जाया करे या खराब करे। अगर कोई जाया करेगा या खराब करेगा तो उसको जमान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपका माल जाया किया है। तो ये माल क्या है? मोहतरम है, इसका एहतराम है, इसकी इज्जत है भाई। तो इस्लामी ममलिकत के अंदर हर शख्स की जान भी महफूज है और उसका माल भी महफूज है। जैसे जान मोहतरम है इसी तरह माल भी मोहतरम है। तो यहां पर भी हम कहते हैं ये जो उम्मे वलद है ये अगरचे माल मुतकविम तो नहीं लेकिन माल मोहतरम तो है, एहतराम तो इसका है, ईसाई इसका मालिक तो था ना, तो मोहतरम तो है, तो इसका मोहतरम होना ही काफी है सही के लिए कि इस पर जमान को वाजिब किया जाए, मुफ्त में ये उसके हाथ से न निकले भाई। ये इसी तरह है जैसे किसास भाई, किसास देखो, किसास कोई माले मुतकविम नहीं है, किसास एक हक है और हक मोहतरम है, वो उस मकतूल के अवलिया को दिलाया जाता है ममलिकत इस्लामिया के अंदर। किसास कोई माले मुतकविम नहीं है लेकिन एक हक मोहतरम है, वो मकतूल के अवलिया का हक है, इसका एहतराम है, लिहाजा यह हक इनको दिलाया जाता है और कातिल को भी किसासन कत्ल किया जाता है। लेकिन अगर मकतूल के अवलिया में से कोई एक भी माफ कर दे तो किसास साकित हो जाता है। मसलन एक आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया और इस आदमी के पांच बेटे हैं, तो ये पांचों जो हैं ये मकतूल के यानी अपने वालिद के अवलिया बन गए किसास के अंदर। अब ये पांचों किसास लेंगे उस कातिल से, तो ये जो किसास है ये इन पांच बेटों का हक बन गया। अब इनमें से एक बेटा जो है वो नेक था, तबलीगी जमात से उसका ताल्लुक था, उसने कातिल को अपना हक किसास माफ कर दिया। तो अब जब किसास एक बेटे ने माफ किया तो किसास के अंदर तकसीम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कातिल को कुछ कत्ल कर दिया जाए और कुछ छोड़ दिया जाए। कत्ल होगा तो पूरा ही कत्ल होगा, छोड़ा जाएगा तो पूरा ही छोड़ा जाएगा। तो किसास में तकसीम नहीं हो सकती। तो जब एक बेटे ने भी अपना किसास साकित कर दिया, माफ कर दिया, तो फिर बाकी सबका किसास भी साकित हो गया। लेकिन यहां एक कीमती बात याद रखना कि किसास सिर्फ इस बेटे का तो हक नहीं था, बाकी बेटों का भी तो हक था, लिहाजा बाकियों के लिए अब वो किसास जो है वो माल से बदल जाएगा। किसास जो था वो इनका हक मोहतरम था, लिहाजा हक मोहतरम होना काफी है, लिहाजा उस पर अब माल वाजिब हो जाएगा कातिल पर, यानी दियत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दियत। उसको कत्ल तो नहीं किया जा सकता लेकिन उस पर दियत आ जाएगी। और दियत मसलन 100 ऊंट हैं, 100 ऊंट तो हर बेटे का हिस्सा 20 ऊंट बन रहे हैं, तो एक बेटे ने माफ कर दिया तो उसका हिस्सा 20 ऊंट तो साकित हो गए, जबकि बाकी बेटे जो हैं उनमें से हर बेटे का हिस्सा 20 ऊंट हैं वो उस कातिल को अदा करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गए? तो किसास देखो वो कोई माले मुतकविम नहीं था, वो हक मोहतरम था, तो उस हक मोहतरम की वजह से माल वाजिब हो गया, माल वाजिब हो गया। तो यहां पर भी उम्मे वलद जो है वो माले मुतकविम तो नहीं है लेकिन मोहतरम तो है, तो इस एहतराम की वजह से भी वो ईसाई की मिल्कियत से मुफ्त में नहीं निकलेगी क्योंकि ये उसका माले मोहतरम है, लिहाजा उस पर जमान आ जाएगा, वो कीमत अदा करेगी फिर उसकी मिल्कियत से निकल जाएगी। तो जमान के वाजिब होने के लिए माले मुतकविम का होना जरूरी नहीं है बल्कि हक मोहतरम भी काफी है भाई। तो कहते हैं वली अन्नहा इल्लम यकुन मुतकविमतन, और इसलिए क्योंकि उम्मे वलद की मालियत अगरचे मुतकविम नहीं है, फहिया मोहतरमतुन तो ये मोहतरम है जी। माले मुतकविम तो नहीं है लेकिन मोहतरम तो है। वहां दायक फील वजूब जमानी, और ये एहतराम काफी है जमान के वाजिब होने के लिए। कमा फिल किसास इल मुश्तरकी, जैसे कि उस किसास के अंदर जो मुश्तरक हो कई अवलिया के दरमियान। इदा अफा अहदुल अवलिया, जब उन अवलिया में से कोई एक मुआफ कर दे, यजिबुल मालुल बाकीना, तो बाकियों के लिए माल वाजिब होगा भाई। सूरत समझ में आ गई? आगे देखिए, वलव माता मौला हा तकत बिला से आयतीन, यही उम्मे वलद है ईसाई की, अगर आका का इंतकाल हो गया तो फिर ये बगैर माल के ही आजाद हो जाएगी, क्योंकि उम्मे वलद आका के मरने पर वैसे ही आजाद हो जाती है। कहते हैं वला उमा तमाओ लाहा, और अगर इस उम्मे वलद का ईसाई आका मर गया आतकत बिला से आयतिन, तो ये आजाद हो जाएगी बगैर सई के। लि अन्नहा उम्मु वलदिन, क्योंकि ये उम्मे वलद है। वला आजत फी हयात ही ला तुरत दुकिन नतन। सूरत ये भाई कि ये ईसाई की उम्मे वलद जो है ये सई कर रही है अपनी कीमत के अंदर, तो अगर ये अपने आका की जिंदगी में आजिज आ गई अपनी कीमत अदा करने से आजिज आ गई, तो कहते हैं इसको दोबारा आम बांदी नहीं बनाया जा सकता। इसको दोबारा आम बांदी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्योंकि अगर आप इसको फिर उस आका की तरफ लौटाएंगे आम बांदी बनाकर, तो मुकातबा बनाने का सबब अभी भी मौजूद है। और मुकातबा बनाने का सबब क्या था? उम्मे वलद का मुसलमान होना और आका का ईसाई होना, वो सबब तो अभी भी मौजूद है। तो लिहाजा अगर आप इसको आम बांदी बनाकर फिर आका की तरफ लौटाएंगे तो वो सबब मौजूद है, तो ये दोबारा मुकातबा बन जाएगी। भाई बात समझ में आ गई, लिहाजा इसको आम बांदी बनाकर दोबारा आका की तरफ नहीं लौटाया जा सकता, अगरचे ये कमाई से आजिज ही क्यों ना आ जाए। तो कहते हैं वलौ आजत फी हयाती ही, और अगर ये उम्मे वलद कमाई से आजिज आ गई आका की जिंदगी में, ला तुरत दुकिन नतन, तो इसको आम बांदी बनाकर लौटाया नहीं जाएगा। लि अन्नहा लौ रुद्दत किन नतन, इसलिए क्योंकि अगर इसको आम बांदी बनाकर लौटाया जाए तो उईदत मुकातबतन, तो फिर इसको लौटाया जाएगा मुकातबा बनाकर। लिकियामिल मूजिबी, इसलिए क्योंकि वो मूजिब मौजूद है, वो सबब, वो जो किताबत का सबब था वो मौजूद है। बात समझ में आ गई। चलिए बस, बिहादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।